沉默伤神农神农银柱不合神农的生物那么不能把你的马斯蒂把你的不得स्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि विरितां वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम ओम शांति 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 वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमः देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो आनन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दपन्दं हतपाशवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये काशी विश्वनाथ भगवान् की जय भागवत भगवान् की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय प्रेमपुरी जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय कृष्ण कन्हैया की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव परमात्मा की अहैतुक कृपा उस परम पिता परमेश्वर का हम सब पर अनुग्रह प्रेमपुरी आश्रम में हम सब लोग उस परमात्मा का जो हम लोगों ने पहले दिन भगवान वेद व्यास जी ने जिस बात को कहा सत्यम परम धीमहि। वो जो सत्य परमात्मा है उसका हम लोग ध्यान करते हैं, और केवल ध्यान ही नहीं करते हैं, उसके विषय में हम लोग कुछ श्रवण भी कर रहे हैं। क्या श्रवण कर रहे हैं? उत्पत्ति स्थिति। अभी तक हम लोग लय की तरफ नहीं जा रहे हैं। उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा आदि पुरुष कौन, ये कथा कोई और की नहीं है। कथा ये हमारे अपनों की है और कथा हमारी अपनी है। पहले तो अपनों की कथा है। जिस जिस कुल में हम लोग उत्पन्न हुए हैं उस कुल की कथा है। हमारा कुल क्या है, हमारा आदि कुल क्या है, तो उस कुल में हम कैसे आए उसकी कथा है। हम लोग श्रवण कर रहे हैं, उस परमात्मा ने सृष्टि बनाई, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने अनेक अनेक ऋषियों को उत्पन्न किया और उसी में से मनु जी महाराज प्रकट हुए, हमारे आदि पुरुष। मनु जी महाराज हमारे आदि पुरुष हैं और मनु जी महाराज ने उनके पांच संतान छोड़े। पांच संतान यहां पर भागवतकार कहते हैं, मनोस्तु शतरूपाय तिस्र कन्याश्च जग्रे आहु आपुति दीहुतुश्च प्रसूति रीति विश्रुतः। उनकी तीन कन्या, सर्वप्रथम यहां पर वो कन्याओं की वंश परंपरा चल रही है। दो पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तनपाद, उनकी बाद में कथा आएगी, परंतु यहां पर तीन कन्याओं का जो वंश विस्तार है उसकी यहां पर चर्चा हो रही है। हम लोगों ने अभी तक यहां पर कहा कि जो पहली कन्या जिसका नाम दिहुति था, उसका विवाह कर्दम प्रजापति के साथ में हुआ, उनको उनकी नौ कन्याएं हुई और एक पुत्र हुआ जिसका नाम कपिल भगवान हुई। वो कथा हम लोगों ने श्रवण की। अब कहते हैं कि उनकी दूसरी कन्या का नाम है प्रसूति, आकुति उनकी दूसरी कन्या है। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है और उनसे एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म होता है। ये पूर्व की कथा है, कहें अपने को श्रवण करना आवश्यक है क्योंकि हम कौन है इससे पता लगता है। इन कथाओं से अपने को इतना जानना है कि हमारा मूल क्या है, सनातन धर्म का मूल क्या है, इससे अपने को जानने को मिलता है। जो आकुति है उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है और उनसे एक पुत्र होता है जिसका नाम है यज्ञ। उनकी पुत्री का नाम है दक्षिणा। जो हम लोग यज्ञ करते हैं ये यज्ञ साक्षात विष्णु का स्वरूप है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। यज्ञो वे विष्णु हम लोग कहते हैं, यज्ञ नारायण, हम यज्ञ को यज्ञ नारायण कहते हैं। तो साक्षात नारायण स्वरूप वहां से प्रकट होते हैं और उनके साथ में एक उनकी कहना चाहिए कि बहने कहना चाहिए, तो उसका नाम है दक्षिणा। नारायण यज्ञ नारायण और दक्षिणा साथ साथ में है। देखो आप यज्ञ करते हैं वो प्रतीक मात्र हैं, परंतु उसी को हमारे यहां पर धीरे धीरे वही रूढ़ हो गया। और जब यज्ञ होता है, चाहे वो द्रव्य यज्ञ हो, ज्ञान यज्ञ हो, उसके बाद में आप क्या देते हैं, दक्षिणा देनी पड़ती। तो ब्राह्मण आए हैं उनको भी आप दक्षिणा तो देंगे, दक्षिणा साथ साथ में है। परंतु हमारे यहां पूर्व से ही एक परंपरा चली आई है, वो यज्ञ नारायण और दक्षिणा ऋषि प्रजापति और साथ साथ में इनकी जो आकृति है उनको मनुजी महाराज अपने साथ ले गए। अब उसको आप क्या कह सकते हैं, उसका क्या नाम देंगे, वो आप लोग समझो। परंतु वो जो पूरा के पूरा परिवार कहां गया, मनुजी महाराज के साथ में जाके रहने लगा। और उनकी तीसरी जो कन्या है उसका नाम है प्रसूति। जो प्रसूति तीसरी कन्या है उसका विवाह ब्रह्मा जी के अंगुष्ठ से जो पुत्र पैदा हुए थे, क्या नाम उनका, दक्ष। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ और उनको उनसे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। इसलिए कहा जाता है कि हमारी परंपरा क्या है, उस बात को कहने के लिए, और बातें कहने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु यहां से छुटकारा मिले तो हम दूसरी बातें कहें ना। और ये जानने योग्य है, क्योंकि यहां जितने लोग बैठे हुए हैं मुझे तो लगता है कि सब जानकार है और जानने की इच्छा रखने वाले हैं। एक होते हैं जानकार लोग, एक होते हैं कहते हैं कि हमने बहुत सी कथा सुन डाली है। क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कहूं, थोड़ा सा हल्का सा कहूं, बहुत से लोग बोलते हैं, परंतु यहां ऐसा नहीं है। यहां जिज्ञासु लोग हैं, क्योंकि मुझे प्रातःकाल से पता लगा कि यहां पर किसी एक सज्जन ने, किसी श्रोता ने कहा कि स्वामी जी ने उस पर अगर उतना विस्तार डाला होता तो अच्छा था। हमने कहा जरूर अवश्य। उस 16 कन्याएं उत्पन्न हुई प्रसूति से, दक्ष की, दक्ष प्रजापति से 16 कन्याएं हुई। विवाह तो करना होता है, उन्होंने एक साथ 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया। धर्म को, 13 कन्या को उन्होंने धर्म को प्रदान किया। उनकी नाम अगर आप जानना चाहेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ध्री और मूर्ति। ये दक्ष प्रजापति की ये 13 कन्याएं हैं। और 13 कन्या का विवाह किनके साथ हुआ, धर्म के साथ। 16 में से 13 गई बची, 3 बची। और धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म के गुण क्या है, तो मनुजी महाराज कहते हैं तो धर्म के 10 लक्षण हैं। और पहले कहा गया था कि यहां पर जो जब धर्म का और पृथ्वी का जो संवाद हो रहा था उस समय 39 उनके गुण कहे गए थे। उस प्रातःकाल के जो श्रोता थे उन्होंने कहा कि वो गुण जो 39 है वो कौन से हैं, जो धर्म के गुण हैं वो अपने को कौन से होने चाहिए, हम सुन लेते हैं। तो भागवत ने बहुत सुंदर उसके लिए चर्चा की है, सत्यम, शोचम, दया, शांति, ये धर्म के गुण हैं। 39 गुणों में से ये सत्यम, शोचम, दया, शांति, त्याग, संतोष, आर्जवम, क्षमो, तमस्तपः, साम्यम, तितिक्षो, परतिश्रुतः, ये धर्म के गुण हैं। ज्ञान विरक्त ऐश्वर्य, ज्ञान भी है, विरक्ति भी है, ऐश्वर्य भी है, शौर्य है, तेज है, बल है, क्षम है, दम है, तप है, समता है, तितिक्षा है, ऐसे 39 धर्म के लक्षण है। और जहां पर श्रद्धा जाएगी, जहां पर मैत्री जाएगी, वहां पर उनके जो पुत्र होंगे, उनके पुत्र कोई सद्गुण होंगे, उनके अंदर कोई विशेषता गुण होगा, इस प्रकार के अनेक प्रकार के उनके, ये विस्तार हुआ है हमारे पूर्वजों का, और उन्हीं के हम संतान हैं। किसके संतान हैं, हम धर्म के ही संतान हैं। इसलिए यहां पर कहते हैं कि इस प्रकार से अनेक प्रकार के यहां पर ये धर्म के गुण हैं, और धर्म के गुण के साथ साथ में, और एक उनकी जो पुत्री है
वो प्रदान की अग्नि देवता को, अग्नि नारायण को एक पुत्री के साथ में विवाह कर दिया। और एक पुत्री का विवाह उन्होंने किया सर्व पितृगुणों के साथ में, पितृगुणों के साथ में एक पुत्री का विवाह किया, बची एक जिसका नाम सती। और सती का विवाह जगत का कल्याण करने वाले भगवान शिव के साथ में किया। ये हमारे पूर्वज है। और यहां पर मैत्री जी महाराज कहते हैं कि सबके तो पुत्र हुए, उनकी संतान हुई, परंतु भवस्य पत्नी ही तो सती, जो भव भव बंधन को काटने वाले, भव सागर से पार लगाने वाले भगवान सदाशिव हैं। ये कभी नहीं समझना कि भगवान सदाशिव, हम लोग उनको बोलते हैं कि वो तो, हम लोग अपनी तरह से की बातें करते हैं, तो भवस्य पत्नी तु सती भवान देव मनुप्रता आत्मना सदृशं पुत्रं न लभे गुणशीलतः। सबकी तो वंश चला, परंतु सती का कोई वंश नहीं चला, इसका कारण क्या है ये बतलाते हैं। यहां पर भागवतकार कहते हैं, भवे शीलवताम सृष्टे दक्षे दुहित वत्सलः। जो भव के जो सती है उनकी पिताजी दक्ष बहुत बड़े प्रजापति हैं, और उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने एक यज्ञ का जब अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान में सभी लोगों को वहां पर बुलाया, वाचस्पति नाम का यज्ञ किया, वहां पर सभी देवताओं को आमंत्रित किया, सभा लगी हुई है, सभा में ब्रह्मा जी आए हुए हैं, सभी देवता आए हुए हैं, और भगवान शंकर भी वहां पर आए, क्योंकि आयोजक थे दक्ष प्रजापति। वो उस सभा में थोड़े से देरी से आए, थोड़े विलंब से आए, और जब जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो सब लोग उठ खड़े होते हैं, उसी प्रकार सब लोगों ने उनका स्वागत किया और दक्ष प्रजापति का स्वागत किया, परंतु दो देवता वहां पर अपने आसन पर बैठे रहे, एक ब्रह्मा जी और एक भगवान शिव। दक्ष प्रजापति अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करने के बाद में दृष्टि डालते हैं शंकर की तरफ, और शंकर की तरफ दृष्टि डालने से उनका क्रोध थोड़ा बढ़ जाता है। ये तो शंकर को उनको भव सागर से पार करने वाला नहीं मान रहे हैं, उनको समझ रहे हैं कि ये तो जमाता है, ये तो मेरा दामाद है। उनके अंदर ये बुद्धि है, जैसे जो जीवात्मा अपने को जीव समझता है वो परमात्मा नहीं समझता है, उसी प्रकार वो दक्ष भी अपने आप को वहां पर ससुर के स्थान में देख रहा है कि मेरी पुत्री का विवाह शिवजी के साथ में हुआ है, इसलिए ये मेरा जामाता है, ये दामाद है, इसलिए इसको मुझे उठना चाहिए, क्योंकि जामाता का जो एक संबंध होता है वो पुत्र के समान होता है। ऐसे दक्ष की विचार है, दक्ष का विचार, और उसी विचार से उसने विचार किया कि शंकर को भी मुझे नमस्कार करना चाहिए था, मेरा सम्मान करना चाहिए था। और वहां पर कुदृष्टि से, थोड़ी सी टेढ़ी दृष्टि से शंकर की तरफ देखा, भगवान शिव की तरफ देखा। और जब किसी के साथ में आपकी मित्रता हो ना, किसी के साथ में आपकी अच्छे संबंध हो, तो उसमें आपको गुण ही गुण दिखते हैं, ये देखना है। आपका कोई मित्र हो, परम मित्र हो, तो उसके अवगुण को आप ढकने का प्रयत्न करते हैं। ये माता में विशेष गुण होता है, क्योंकि माता सबसे प्रिय मित्र होती है अपने पुत्र की, और सदा के लिए होती है, ये एक समय के लिए नहीं होती है। मां एक ऐसी मां है जो पुत्र के लिए, चाहे पुत्र कैसा भी हो, उसके गुणों को ही देखेगी, उसको दोष को कभी नहीं देखेगी। ऐसा जो परम मित्र होता है, परम स्नेही होता है, कोई अपने मित्र के प्रति वो अपने उनके सद्गुणों को ही देखता है, परंतु कहीं मित्रता कहीं बाधित हो जाती है उसके गुण तो बाजू में रह जाते हैं, फिर क्या दिखने लगता है, अवगुण दिखने लगते हैं। यहां पर थोड़ी सी अपमान तो नहीं हुआ, अपमान नहीं किया भगवान शंकर ने, परंतु उसको महसूस होकर मेरा अपमान किया और विपरीत बुद्धि हो गई, जिसकी दक्ष प्रजापति की विपरीत बुद्धि हो गई और अनासना कहने लगा कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने से अपने पुत्री को शंकर को दिया, ये तो पिशाच के साथ में घूमता है, ये तो इसके मित्र जो पिशाच है ये भस्मे लगाता है, नरमुंड अपने गले में पहनता है, इसके मित्र तो सब पिशाच है, एक राग लगा के घूमता है, इस प्रकार का इसका स्वभाव है, इसको मैंने अपने पुत्री को देकर के बड़ा विनाश किया। इस प्रकार का बोलते बोलते और कहा कि ऐसे भगवान शिव को अनेक अनेक बातें कहने लगे। भगवान शिव तो आत्मा में रमन करने वाला है, उनको कुछ फर्क अंतर नहीं पड़ता। भगवान शिव पर आप चाहे पुष्प चढ़ाओ चाहे खुद चढ़ जाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान शंकर के जितने मंदिर होते हैं ना, दक्षिण के मंदिर छोड़ करके आप बद्रीनाथ के मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान शंकर का मंदिर नहीं है। आप केदारनाथ में उस हिमालय में जाकर के केदारनाथ में भगवान केदार के अंदर जाकर के दर्शन कर सकते हैं, के कि नहीं करते कि नहीं। भगवान शिव को कोई अंदर नहीं पड़ता, क्योंकि एक समान रहने वाले उनका स्वभाव ये है, एक समान स्वभाव वहां पर बैठे हुए। परंतु क्रोध आया दक्ष को और अनेक प्रकार के अपशब्द कहने लगा, परंतु भगवान शंकर वहां पर बैठे हुए और बैठे बैठे अनेक प्रकार के श्राप दिए, और ये श्राप देने के बाद में उस दक्ष प्रजापति का क्रोध बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और उस समय शंकर जी चुपचाप बैठे रहे। और जब दक्ष ने श्राप दिया ये बात पता लगी नंदी की सर को। सेवक कभी कभी ज्यादा क्रोधित होता है, जैसे भगवान श्री राम के साथ में लक्ष्मण जी थे ना, तो कभी राम जी को कोई कुछ कह दे तो लक्ष्मण जी क्रोधित होते थे, तो सेवक चुप नहीं बैठता है। और प्रधान सेवक है भगवान शंकर के, प्रधान सेवक प्रधान गण कौन है, नंदीकेश्वर, और साक्षात धर्म का स्वरूप है वृषभ। धर्म वृषभ है वो धर्म का स्वरूप है, इसलिए उनसे नहीं रहा गया और उन्होंने प्रतिशाप किया। तो जिस मुख से भगवान शिव को अमंगल बातें कह रहा है, अरे वो मंगल स्वरूप है, तुमने जिस मुख से तुमने भगवान शिव को अपनी वाणी के द्वारा तुमने अपशब्द कहे हैं, तुम्हारा जो बकबक करता है तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाए, साफ दे दिया। कोलाहल मच गया और वहां से वो सभा समाप्त हो गई, वो वाजपेयी के पूर्ण हुआ और बहुत काल बीत गया। और बहुत काल बीतने के बाद में ब्रह्मा जी ने एक और बहुत बड़ा पद दे दिया दक्ष प्रजापति को। दक्ष का मतलब होता है बुद्धिमान। हम लोग जब व्यवहार में कहते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा दक्ष है ना, लगी हुई ना ये टीम भारत में आजकल, उनको कोई हरा नहीं सकता है, बोलते दक्ष है, उनके पास में टीम बढ़िया है ना, लोग ऐसा समझते हैं। जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो, तीक्ष्ण बुद्धि वाला कभी कभी ज्यादा मात खा जाता है, अपने पर उसको बड़ा कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस होता है और कभी कभी वो धोखा खाता है। इसलिए सज्जन लोग सब लोगों की सुनते हैं, सुनो सबकी मन की कहते हैं, लेकिन अच्छी बात हो तो एक बालक से भी अगर आप अच्छी बात, अगर वो बालक अच्छी बात कह रहा है उसकी बात भी आपको सुननी चाहिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ नहीं है। जगत में सर्व के केवल परमात्मा है, उसके अतिरिक्त सभी के सभी अल्पज्ञ हैं। हम और आप सभी अल्पज्ञ हैं, हम सब कुछ नहीं जानते हैं, सब कुछ जानने वाला केवल परमात्मा है। इसलिए किसी किसी से कोई बात श्रवण करनी चाहिए, परंतु दक्ष है वो अपने मन की बात करता है कि मैं सब जानता हूँ। और दक्ष ने एक बार उसको और पद दे दिया गया, प्रजापतियों का उसको प्रमुख बना दिया। और उसने प्रजापतियों का प्रमुख जब बनाया तो उस समय उसने और एक यज्ञ का आयोजन किया, बृहस्पति सव यज्ञ। यज्ञों की परंपरा है हमारे यहां पर, ये जो यज्ञ होते हैं, जैसे आप लोगों को परसों मैंने कहा था कि यष्टि होती है, उसके बाद में चातुर्मास यज्ञ होता है, सोमयाग होता है, वाचस्पति यज्ञ होता है, उसके बाद में ये जो बृहस्पति यज्ञ सबसे बड़ा है। और उसके लिए केवल ब्राह्मण कर सकता है, और ब्राह्मण भी सब ब्राह्मण नहीं कर सकते। हमारे यहां पर एक होता है यज्ञ, एक पौराणिक यज्ञ होता है, उसमें पुराण के मंत्र कहे जाते हैं, और एक वैदिक यज्ञ होता है। वैदिक यज्ञ करने के लिए उसके लिए आपको दीक्षा लेनी होती है, दीक्षा लेनी होती है। और इसीलिए आप लोगों ने बहुत ब्राह्मणों के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, उनको हम लोग दीक्षित कहते हैं, जिसने यज्ञ की दीक्षा ली हो, जिसने अग्निहोत्र लिया हो और यज्ञ करने के लिए जा रहा हो, उसको हम लोग दीक्षित बोलते हैं, चाहे उसका नाम दूसरा हो सकता है। ऐसी दीक्षित होकर के यज्ञ करने की परंपरा केवल अग्निहोत्र करने वालों में है। यहां पर बृहस्पति सव यज्ञ करने की तैयारी हुई, और बृहस्पति यज्ञ उस वैदिक यज्ञ की श्रृंखला का सर्वोत्तम वो उच्च स्तर का यज्ञ है। और जब यज्ञ की तैयारी होने लगी और बड़ा भारी सुंदर मंडप लगा, सभी देवताओं को वहां से आमंत्रण गया, दक्ष पुत्रियों को आमंत्रण गया, और यज्ञ स्थल बना जिसको कनखल क्षेत्र है हरिद्वार में, वहां पर यज्ञ मंडप बना, और देवता लोग वहां पर सब आने लगे। देवता को विमान होते थे, विमान आने लगे। देखा सती ने कि विमान कहां जा रहे हैं, तो सती ने अपने सहेलियों को भेजा कि पता तो लगाओ कि विमान जा कहां रहे हैं। सती को पता लगा कि ये विमान, ये तो हमारे पिताजी के यहां पर यज्ञ उत्सव हो रहा है, वहां पर जा रहे हैं। और सती भगवती आती है और भगवान से कहती है कि हे भगवान, मेरे पिताजी आपके ससुर, यहां पर शब्द का प्रयोग करती है कि आपके ससुर दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, हमें वहां पर जाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें आमंत्रण प्राप्त हुआ है क्या? सती कहती है कि आमंत्रण की क्या आवश्यकता है, वो मेरे पिताजी का यहां पर यज्ञ है। परंतु वहां पर भगवान शिव कहते हैं कि अगर किसी से विशेष संबंध हो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी का और हमारा संबंध ठीक नहीं है, इसलिए वहां पर बिना आमंत्रण का जाना नहीं चाहिए। कुछ लोगों में कुछ ये 6 गुण आते हैं तो वो गुण होते थे, विद्या है, तप है, स्वच्छ शरीर है, और कहते हैं कि युवावस्था है, उच्च कुल है, ये 6 गुण जिनके अंदर अगर सद्गुण हुए, कोई विचारशील है उसके अंदर ये सद्गुण होते हैं, और कोई दुष्ट व्यक्ति है कि उसके अंदर यही गुण जो है वो दुर्गुण हो जाते हैं, उनको अभिमाना जाता है। इसलिए हे सती, हमें वहां पर जाना नहीं चाहिए बिना आमंत्रण का। परंतु सती कहती है कि नहीं भगवान, वो तो पिताजी ने शायद भूल गए होंगे हमें आमंत्रण देने के लिए, कहा कि सब लोग जा रहे हैं, उनसे पूछो तो सही कि उनको आमंत्रण मिला है कि नहीं मिला है। सबको आमंत्रण मिला हुआ था, इसलिए भगवान शिव ने कहा कि वहां पर अपने को नहीं जाना चाहिए। और मैं जानता हूं कि यहां पर भगवान बहुत सुंदर एक बात कहते हैं, सत्वम शुद्धम वसुदेव शब्दितम, जिसका हृदय विशुद्ध है उसी को वसुदेव कहते हैं, और वहां पर भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए जिसका हृदय शुद्ध हो वहां पर जाने में हर्ज नहीं है, परंतु वहां पर नहीं जाना चाहिए। सती कुछ थोड़ी सी वहां पर विशेष रूप से आग्रह करती है कि हमें जाना चाहिए, और भगवान को कहती है कि हमें जाने में वहां पर हर्ज ही क्या है। परंतु भगवान शिव वहां पर शांत हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, अब ध्यानस्थ हो जाते हैं, सती विचार करती है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मन कहते हैं कि जो हमारा है संकल्प और विकल्प वाला हमारा मन है, मन शुद्ध न हो ना उसके अंदर संकल्प आते हैं और विकल्प आते हैं, और संकल्प और विकल्प आने लगे सती के मन में कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इधर पतिदेव है उधर पिताजी हैं, परंतु वहां पर सती के मन में आया कि मैं यहां से वहां जाऊंगी, मेरी माता मिलेगी, बहनें मिलेंगी, सगे मिलेंगे, संबंधी मिलेंगे, और ऐसा विचार करते करते सती के मन में चंचलता आई। माया है, माया में चंचलता आती है, सती तो भगवती है परंतु चंचलता आई, और चंचल मन से भगवती सती वहां से जाने के लिए प्रस्थान करती है, और जैसे प्रस्थान करती है भगवान शिव को पता लगा, और भगवान शिव ने उनके साथ में जाते हुए कुछ अपने वृषभ को भी बोल दिया, और साथ में कुछ यक्ष को बोल दिया कि तुम उनके साथ में जाओ रक्षा के लिए, और सती भगवती अपने जो पिताजी का यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ के कुंड के पास में उस मंडप में पहुंच जाती हैं। माता ने देखा, माता ने स्वागत किया, गले लगाया, बहने मिली, परंतु जहां पर यज्ञ चल रहा था वहां पर यजमान बने हुए थे दक्ष प्रजापति। देखा कि सती आई है परंतु तिरछी नजर से देखा, उपेक्षा की नजर से देखा, और सती को पता लगा कि मैंने भूल की है, यहां करके मुझे आना नहीं चाहिए था। उसने दृष्टि दौड़ाई, ठीक है मेरा अपमान हो तो कोई बात नहीं, परंतु मेरे जो पति हैं भगवान साक्षात शिव है, उनका यज्ञ भाग तो रखा होगा, उनका स्थान पर निर्धारित रखा होगा। हम लोग जब कोई अनुष्ठान करते हैं तो जैसे अनुष्ठान में यहाँ पर सभी मातृकाएं सब यहाँ पर स्थापन रखा हुआ है, इसलिए ऐसा बड़ा यज्ञ होता है तो वहां पर उन देवताओं का स्थापन किया जाता है, उनका यज्ञ भाग रखा जाता है, और भगवान रुद्र का तो निश्चित रखा जाता है। सत्य ने देखा कि वहां पर रुद्र भाग रखा होगा, वहां पर दृष्टि डाली वो रिक्त स्थान है, वहां पर किसी प्रकार का यज्ञ भाग नहीं है। सती के मन में क्रोध आया। हमारी भारतीय परंपरा है स्वयं का अपमान होगा तो कोई बात नहीं, परंतु अपने पति का अपमान हमारे यहाँ की पतिव्रता सहन नहीं कर सकती है, यहाँ की देवी पति का अपमान नहीं कर सहन कर सकती है। और उसी प्रकार वहां पर सती ने भी देखा कि वहां पर भगवान शिव का भाग नहीं है, और क्रोध आया और क्रोध आया, और उसने विचार किया कि अब मैं यहां से जाती हूं वापस, तो भगवान शिव एक तो मुझे बोलेंगे नहीं पहली बात, अगर कभी बोल भी देंगे तो मुझे कहेंगे हे दक्ष कन्या आओ बैठो, मेरा संबंध मेरे पिताजी से जोड़ेंगे और वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगे। इसलिए सती ने विचार किया कि इस शरीर का संबंध ही समाप्त कर देना चाहिए। वहीं पर बैठ गई, और वहां पर बैठ करके सती ने अपने प्राणों को अपान में चढ़ाया, ज्ञान में चढ़ाया, उदान में चढ़ाया, और चढ़ाते चढ़ाते उसने ब्रह्मरंध्र में अपने प्राणों को चढ़ाया, और वहां पर योग अग्नि के द्वारा वहां पर सती ने अपने आप को उसमें आहूत कर दिया, और वहां पर सब जगह हाहाकार हुआ कि सती ने अग्नि प्रवेश किया, सती ने अग्नि प्रवेश किया। और वहां पर जो लोग आए थे शिवगण आए थे, उन्होंने थोड़ी देर के लिए वहां पर देखा कि युद्ध करना चाहिए, युद्ध करते करते उस समय देखा तो और वहां पर अनेक प्रकार के देवता प्रकट हुए, और उन्होंने उनको सबको वहां से भगा दिया। भगवान शिव तो कैलाश में बैठे हुए थे, वहां पर नारद जी ने जाकर के कहा कि भगवान आपको कुछ पता है, सती का ऐसा ऐसा हुआ है, सती ने मैं अग्नि प्रवेश किया है। और उसी समय भगवान को थोड़ा सा क्रोध आया, और भगवान ने अपने एक जटा निकाली, और जटा निकाल करके इस शिला पर पटकी, वहां से एक बड़ा भयंकर एक वीर पुरुष जिसका नाम वीरभद्र था, उसने कहा कि भगवान क्या आज्ञा है। भगवान शिव ने कहा कि जो यज्ञ ऐसा हो जो विधि न हो, विधि के अनुसार यज्ञ न हो तो यज्ञ का भंग कर देना चाहिए, विधिहीन जो यज्ञ है उसको नष्ट कर देना चाहिए, जाओ और दक्ष प्रजापति का यज्ञ है उसको भंग कर दो। वहां से वीरभद्र पहुंच जाता है और वहां पर पहुंच करके, यहां पर बड़ा विस्तार से लिखा है, वीरभद्र पहुंच करके वहां पर यज्ञ का वहां पर विध्वंस करता है, वहां पर सब लोगों को वहां पर पीटना शुरू करता है, मारना शुरू करता है और दक्ष प्रजापति को पकड़ करके मारने का प्रयत्न करता है, परंतु दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की है, दक्ष प्रजापति की वहां पर मृत्यु हो नहीं सकती है। पहले के समय में जब यज्ञ होता था वहां पर यज्ञ बलि को मारने के लिए वहां पर एक शस्त्र रखा जाता था, वो खड्ग रखा जाता था, अंत में वीरभद्र ने वो खड्ग उठाया और उस खड्ग से दक्ष प्रजापति का शिरच्छेद कर दिया और वो जो उनका वो अग्रभाग था वो हवन कुंड में डाल दिया। हाहाकार हाहाकार मच गया, सब लोगों में वहां लगा कि यज्ञ भंग हो गया, यज्ञ भंग हो गया। और ब्रह्मा जी को पता लगा, सब लोगों ने विचार किया कि यज्ञ तो भंग नहीं होना चाहिए, ऐसा भी यज्ञ भंग नहीं होना चाहिए, यज्ञ सत्कर्म है। ऐसे देखा जाए तो यज्ञ सबसे ज्यादा सत्य कर्म है। हम यहां पर करते हैं द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्थापरे द्रव्य यज्ञ है, हम लोगों को आहूत करते हैं, वो साक्षात हम देवताओं को आहूत देते हैं। हमारे यहां पर यज्ञ के द्वारा, यज्ञ जो है वो देवताओं का मुख है। हम लोग यज्ञ में जब आहूति देते हैं तो किनको पहुंचती है, वो देवताओं के मुख, यज्ञ के द्वारा देवताओं का जो मुख है उसमें पहुंचती है और वहां पर पहुंच जाती है। इसलिए यज्ञ भंग नहीं होना चाहिए, ये सब विचार किया और विचार करते सब लोगों ने विचार किया कि अब ये तो घटना तो घट गई है, उसका कोई ना कोई परिष्कार भी होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के साथ में सब मिलकर के सोचते हैं कि इसमें जरूर हमारी कोई ना कोई भूल हुई है, इसलिए भूल को सुधारना चाहिए। और भूल को सुधारने के लिए सबके सब देवता एकत्रित होते हैं, ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सब देवता कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। जब कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं तो भगवान कैलाश की बड़ी सुंदर व्याख्या यहां पर की गई कि कैलाश कैसा है, वहां पर कैसे कैसे वृक्ष हैं, कैसे कैसे वहां पर पक्षी है, कैसे कैसे वहां का दृश्य है, बड़ा सुंदर यहां पर वर्णन किया है। और सभी लोग प्रार्थना करने के लिए शिवजी की तरफ जाते हैं और शिवजी की तरफ जाते जाते प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ पर जो कुछ भजन भी उनके द्वारा, हम भजन को भी श्रवण करें और फिर भगवान शिव जैसे बैठे हुए उनकी प्रार्थना हम लोग करेंगे।
एक बिल्व पत्रम, एक पुष्पम, एक लोटा जल की धारा, दयालु रिझ के देते हैं चंद्र मोली फलचार, व्याघ्रम्बरम भस्मांबरम जटा लूट लिबास, आसन जमाए बैठे हैं कृपा सिंधु कैलाश। तो कैलाश के निवासी नमु बार बार हूँ, नमु बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। तू कैलाश के निवासी नमु बार बार हूँ, नमो बार बार आयो शरण तिहारी शंभु तार तार, तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार। भक्तों को कभी तूने शिव निराश ना किया, मांगा जो जी ने चाहा वरदान दे दिया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मंगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू आयो शरण तिहारी, शंभु तार तार तू कैलाश के निवास। बखान क्या करूं तेरी आँखों के ढेर का, चपटी बभूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं तेरी आँखों के ढेर का, चपटी बभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्तिदास, ओ हे गंगधार मुक्तिदास, ओमकार तू प्रभु, ओमकार तू प्रभु, ओमकार तू आयो शरण तिहारी, शंभो तार तार तू कैलाश के निवास। तेरी कृपा बिना नहीं ले कहीं अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तणु तणु। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक ही अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तणु तणु। कह दास एक बार, ओ कह दास एक बार, मुझको निहार तू, मुझको निहार तू, मुझको निहार तू आयो शरण तिहारी, प्रभु तार तार तू आयो शरण तिहारी, शंभु तार तार तू कैलाश के निवासी, नम बार बार हूँ आयो शरण तिहारी, प्रभु तार तार तू आयो शरण तिहारी, प्रभु तार तार तू आयो शरण तिहारी, प्रभु तार तार तू।
भगवान शंकर की जय। सभी देवता भगवान शिव की प्रार्थना करने के लिए कैलाश की ओर जाते हैं। जब कैलाश की ओर जाते हैं तो वहां पर भगवान शंकर को सब लोगों ने देखा। भगवान शिव बैठे हुए शांत चित्त, तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षु शरणे सुरः। भगवान शंकर विराजमान है, संकादेर महासिद्धे शांते शांतर विग्रह। भगवान सदाशिव बैठे हुए हैं और संकादि बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं उनके आसपास में, जिनकी अनंत आयु है, अनंत जन्मों से तप कर रहे हैं। और भगवान शिव एक शांत बैठे हुए हैं। चित्रम वटतरे मूलो, भगवान सदाशिव जैसे बैठे हैं एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, बट वृक्ष हैं। वृद्ध शिष्या गुरु युवा, भगवान सदाशिव का स्वरूप का वर्णन करते हैं। बड़े बड़े ऋषि वहां पर बैठे हुए हैं, सनकादि ऋषि बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं और वहां पर प्रवचन चल रहा है। भगवान सदाशिव का सुंदर स्वरूप और उपदेश दे रहे हैं सभी संतों को, वहां पर ऋषियों को। चित्रम वटत्रे मोलो वृद्ध शिष्या गुरु युवा,
बड़े बड़े सिद्ध अनंत काल से तपस्या में लगे हुए हैं, बड़े बड़े वृद्ध हैं, उनका स्वरूप बड़ा वृद्ध दिख रहा है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं और शिष्य रूप से तो ऋषि मुनि हैं और गुरु रूप से भगवान शंकर बैठे हुए हैं और उनका जो स्वरूप है जैसे लगता है कि अभी अभी उनका जन्म हुआ हो। जब हम लोग जब भगवान शिव की उपासना करते हैं तो बड़ा सुंदर मंत्र आता है, सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः, भवे भवे नाति भवे भवस्माम भवोद्वाय नमः। सद्यो जातम प्रपद्यामि, ऐसा लगता है कि अभी अभी किसी बालक का जन्म हुआ है। इतने कोमल है भगवान शंकर, भगवान शंकर जैसे हम सोचते हैं ना वैसे नहीं है। भगवान शिव शांत है, निर्मल है, सबके कल्याण चाहने वाले हैं, इसलिए कोई शिव का द्वेष नहीं करना, शिव तो अपना स्वरूप है। ऐसे शिव स्वरूप के पास में सभी देवता पहुंचते हैं और शिव जी वहां पर उपदेश दे रहे हैं। उपदेश कैसा है, गुरुस्तु मौन व्याख्यानम, कोई मौन कोई व्याख्यान होता है, यहां पर कोई कहे कि यहां पर भागवत सप्ताह होने वाले हो लेकिन मौन होने वाले हैं, अगर ऐसा कोई कहे कि ये छाप देवे यहां के ट्रस्टी लोग कि अगले साल कोई वक्ता आने वाले हैं और वो मौन भागवत करेंगे, तो बोलेंगे कि मौन क्या होता है, भागवत कोई मौन होगी, जब तक व्याख्यान नहीं होगा तब तक हम समझेंगे क्या, यहां आएंगे क्यों। परंतु यहां पर भगवान शंकर गुरुस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया, मौन व्याख्यान के द्वारा जो वहां पर बैठे हुए ऋषि मुनि हैं उनका जो है संशय दूर हो रहा है। वो तो कौन सा व्याख्यान है, कहते हैं कि जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ये एक जो चिन्मय मुद्रा है। हमारे यहां पर तीन गुण की सृष्टि जिसमें सबसे छोटी अंगुली है उसको हमारे यहां पर गिनते हैं, वो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों ये गुणों की सृष्टि को अलग करके त्रिगुणातीत हो करके और फिर उसके बाद में ये जीव का स्वरूप है। हम लोग किसी को कुछ बताना होता है ना कि मैं तुमको देख लूंगा, किसको बोलते हैं, ये अहंकार का स्वरूप है और अहंकार ही जीव है। जब तक अहंकार है तब तक वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ने का उसका स्वभाव है। परंतु भगवान सदाशिव वहां पर उपदेश देते हैं, जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव और ब्रह्म ये अलग नहीं है, उनमें भेद नहीं है, ऐसा मौन व्याख्यान देते हुए भगवान सदाशिव वहां पर भगवान शिव बैठे हुए और सभी ब्रह्मादि देवताओं ने उनका नमस्कार किया और उनको नमस्कार करने के बाद में उनकी स्तुति करने लगे। वापिस पुनः ब्रह्मा जी ने कहा कि जाने त्वमेव विश्वस्य जगतो योनि बीजयो, भगवान इस संसार के बीज हैं, भगवान की सदाशिव इस जगत के उत्पत्ति करने वाले हैं और भगवान शिव नहीं, यहां पर जो परब्रह्म है उसने अपने तीन स्वरूप ग्रहण किए। जो पूर्ण परब्रह्म है हम लोग थोड़ा समझने में कभी कभी भूल करते हैं, ब्रह्मा जी उत्पत्ति करने वाले हैं, विष्णु भगवान पालन करने वाले हैं और जो शिव है रुद्र है वो संहार करने वाले हैं, ऐसा हम लोग समझते हैं और संहार के देवता होने के नाते हम उनको कम मानते हैं। अगर सदाशिव ने अगर संहार नहीं भी किया तो आप रहने वाले हैं क्या, क्योंकि ये जो परंपरा है ये काल है इसकी मर्यादा है। ये जो 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी की एक दिन होता है और ऐसे 100 वर्ष होने पर भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन एक उनकी आयु समाप्त हो जाती है और उस समय प्रलय आता है। हमारे यहां परंपरा है, हमारे यहां मान्यता है, क्या मान्यता है कि जो चतुर्युगी जो ब्रह्मा जी का एक दिन हजार वर्ष बीतने पर एक दिन और हजार वर्ष बीतने पर एक रात्रि एक आता है उसके अंदर प्रलय और एक होता है महाप्रलय। जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है उस समय महाप्रलय आता है और महाप्रलय में जो जीव हम लोग जिनकी मुक्ति नहीं होती है हम लोगों की जीवों की तब तक मुक्ति नहीं हो सकती जब तक उनको ज्ञान न होगा। रीते ज्ञानान मुक्ति अपने यहां पर श्रुति कहती है हमारे यहां कहा जाता है कि ज्ञाने परिसमाप्ते थे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। ज्ञान होने पर हमारे संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं परंतु जब तक हम किसी फल की कामना करते हुए हम कर्म करते रहेंगे तब तक हमारे कर्म बढ़ते रहेंगे चाहे शुभ कर्म हो उस शुभ कर्म के साथ में कुछ अशुभ कर्म भी हो जाते हैं। जब आप यज्ञ करेंगे तो यज्ञ में हमारे यहाँ पर माना जाता है कि वहां पर हमसे कुछ जीव हिंसा भी होती है उसके लिए अलग प्रकार से हमारे हम लोगों को वहां पर उसका तर्पण करना होता है उसके लिए हमारे हमारा अनुष्ठान अलग करना पड़ता है। परंतु जब तक जीव को ज्ञान नहीं होगा हम तो भगवान के पास जाते हैं क्या मांगने के लिए भौतिक पदार्थ मांगने जाते हैं और भौतिक पदार्थ आप भगवान के पास जाके ले आएंगे लेकिन भौतिक पदार्थ जब आप लाएंगे उसका जब आप उपभोग करेंगे तो आपका जो पुण्य है वहां पर क्षय हो जाएगा और कभी आपसे कुछ पाप कर्म हुए होंगे वो वहीं की वहीं खड़े रहेंगे और उसका ही फल आपको मिलेगा ये क्रम चलता रहेगा। और जब तक ये कितने ही युग आएंगे कितने ही प्रलय होंगे परंतु हम लोग हमारा जो संचित कर्म है वो जब तक नष्ट नहीं होगा। हमारे कहते हैं ना तीन तरह के कर्म होते हैं एक संचित कर्म एक प्रारब्ध कर्म और एक क्रियमान कर्म तीन कर्म है जो प्रारब्ध कर्म है तो ये हमारे शरीर के साथ पूर्ण हो जाता है। क्रियमान कर्म हम कैसे करते हैं उस पर आधारित है परंतु संचित कर्म हमें पता नहीं है हमारे जन्म जन्मांतर में कौन से ऐसे कर्म हुए उसका हमें पता नहीं है और जब प्रलय आता है तो हम लोग कहां जाएंगे तो सदा शिवी है अपने पास सभी जीवों को सुख देने वाले हैं वो आपको दुख देने के लिए वो इस संसार का नाश नहीं करते हैं क्योंकि संसार का तो नाश होने वाला है क्योंकि समय समाप्त होने के बाद में वो जो सदाशिव है वो सदाशिव के चरणों में बैठ करके उनके हृदय में बैठ करके उस काल में जीवात्मा सुख को प्राप्त करता है इसलिए सदाशिव जी को महान मानते हैं। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि हम लोग आपको तो आपको बीज योनी है शक्ते शिवच्छ परम यद ब्रह्म निरंतरम भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है और भगवान की स्तुति करते हुए त्वं कर्मणा मंगलम मंगलानां कर्तुंस्म लोकम तनुषे स्व परम वा कहते हैं कि आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं। हम किसी को भी माने परंतु एक परमात्मा है जो जिसका बंधन इस संसार के साथ में लगा हुआ है और उस बंधन में हम भी पड़े हुए हैं और हम जीव रूप से हैं। जो अज्ञानी होता है उसको पशु कहा जाता है और अज्ञानियों के भी अगर पति है तो उनको क्या कहते हैं पशुपति केवल कहते हैं भगवान पशुपति। हम सबके जो पांच बंध में बंधा हुआ है जो कर्म बंध में बंधा हुआ है वो पशु है। अब हम लोग ऐसे तो देखने में आता है कि हम तो पशु तो नहीं दिख रहे हैं परंतु हम कहीं ना कहीं बंधन में फंसे हुए हैं। तो हमारा स्वामी कौन है शिव है। शिव का मतलब क्या होता है कल्याण। शिव का सीधा सीधा अर्थ होता है कल्याण। जो कल्याण करने वाला है आप किसको चाहेंगे कल्याण करने वालों को चाहेंगे कि जो हम लोग फल प्राप्त करेंगे उसको सुख भोग करके फिर हमको दुख में आने के लिए क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति जब पुण्य क्षीण हो गया फिर आ गए वहां पर अगर सदा के लिए आपको सुख चाहिए तो सदाशिव दे सकते हैं। इसलिए सदाशिव की निर्मल भक्ति जब करेंगे तो फिर प्रलय की आने की आवश्यकता नहीं है, उससे पहले आपको सब सुखमय बना देंगे। ऐसे सदाशिव की बड़ी सुंदर यहाँ पर व्याख्या की गई है और उन्होंने कहा कि आप ही कर्म का फल देने वाले हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि विपरीत हो जाता है, इसलिए आप ऐसा करें कि जो भी कुछ दक्ष से भूल हुई है उसके निवारण के लिए आप चले। भगवान शिव ने कहा कि ये तो हमने कोई बहुत विशेष हमने कोई क्रोध नहीं किया था, थोड़ा सा हमने दंड दिया। बोले भगवान आप चले, क्योंकि यज्ञ की आहुति पूर्ण करना है। इसलिए वहां पर सब भगवान के साथ में श्री भगवान भी आ जाते हैं और आकर के कहते हैं कि अब तो जो दक्ष का सर है वो तो आहुत हो चुका है, वो जल चुका है, तो श्राप मिला था नंदी के स्वर से। इसलिए कहें कि कोई बकरे का सिर लाओ, और बकरे का सिर लाया और दक्ष प्रजापति के धड़ से लगाया और वहां पर भगवान सदाशिव ने कहा कि चलो दक्ष उठो, और वहां पर दक्ष उठ करके वहां पर खड़े हो जाते हैं और भगवान शिव की स्तुति करने लगते हैं। आप लोगों ने देखा है कहीं, पता नहीं, शिव जी के मंदिर में जब जाते हैं तो एक विधि ये भी है कि भगवान सदाशिव के पास में जाकर के वही गाल बजाते हैं। हम तो भगवान सदाशिव को जल चढ़ा के आते हैं और वहां पर वो उठ के खड़ा हो गया और स्तुति करने लगे, और उस समय स्तुति करते करते भगवान विष्णु वहां तक नहीं पहुंचे थे। वहां पर भगवान विष्णु का उस समय वहां पर आगमन होता है, और जब भगवान विष्णु वहां पर आते हैं तो सभी लोग भगवान विष्णु की वहां पर प्रार्थना करते हैं, और भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो सुनो, क्योंकि भगवान शिव विष्णु कहते हैं कि देखो तुम लोग भूल नहीं करना, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य, मैं ब्रह्मा हूं, सर्व का मतलब है ब्रह्मा हूं, हम शिव हैं, जगत कारणम परम, ये जगत का कारण है। हम लोगों ने तो अपने अपने नाम ग्रहण किए हैं, एक उत्पत्ति करने वाला है, एक स्थिति रखने वाला है, एक संहार करने वाला है, परंतु हम भिन्न नहीं है, हम अभिन्न हैं। इस प्रकार तुम लोग इस प्रकार की द्वैत बुद्धि मत रखो, और इस प्रकार वहां पर बहुत सुंदर पुनः उसके पश्चात उन लोग वहां पर देवता आए, भगवान सदाशिव के सानिध्य में उस यज्ञ की पूर्ति हुई। भगवान की जब कृपा होती है तो हमारा कैसा भी यज्ञ हो, हम लोग भी नित्य यज्ञ कर रहे हैं, संसार में यज्ञ ही यज्ञ हो रहा है, हम लोग प्रतिदिन हम अपने जठराग्नि को भी तृप्त करते हैं, करते हैं ना, वो भी एक यज्ञ है। जब हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान को भोग लगाते समय वो शुद्ध अन्न होना चाहिए ना, अगर अशुद्ध अन्न है तो उसके लिए हमारे यहाँ पर कुछ विधि बताई गई है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मना होता हूं है? कहते हैं ना श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु, ये कह करके। परंतु आजकल कहाँ जाते हैं, कौन सा भोजन करने जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं होते हैं? नहीं, आप लोग नहीं होते होंगे, हम लोगों को भी लाइन में खड़ा करने का लोग प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन वहां पर हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम ऐसे ही ठीक हैं। और खास करके संतों को तो बोलते हैं कि संत ज्यादा खाने वाले होते हैं ऐसा लगता है, उनके लिए बोलते हैं कि महाराज आपके लिए तो हमने बहुत बड़ी खीर बनाया था यहाँ पर पतीले भर करके, ये तो आपने कुछ खाया नहीं, वो समझते हैं कि वो सब गटगट करने वाले होते हैं। शुद्ध अन्न हम लोगों का खाने का खाना चाहिए, परंतु फिर भी अगर नहीं हो तो उसको भगवान को अर्पण करके, हम लोग जो भगवान को भोग लगाते हैं, हम लोग भगवान को जब भोग लगाते हैं तो भगवान शायद ही उसमें से थोड़ा सा बहुत खाता हो, पता नहीं, हमको दिखता तो नहीं है, परंतु हम उसको भगवान को अर्पण करके उसको प्रसाद ग्रहण करते हैं। 56 भोग लगता है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने 56 भोग कराया होगा, परंतु 56 भोग भगवान ने पाया कि नहीं ये आपको पता नहीं, लेकिन आपको अभिमान ये है कि हमने 56 भोग करवाया। समाज में संदेश जाना चाहिए कि ये बहुत आस्तिक व्यक्ति है, इनके पास पैसा पड़ा सत्कर्म में चला जाता है, ऐसे हम बताने का प्रयत्न करते हैं, परंतु फिर भी भगवान उसको पाता है। जैसे आप लोगों को एक उदाहरण दो, हाथी होता है ना, हाथी जंगल में जाता है और जंगल में वो पेड़ पौधे फल कुछ भी खाता है। एक कैद आप लोगों ने सुना है, कैद भगवान गणेश जी कहते हैं कि कैद भक्षण करते हैं कपित, वो हाथी उस कपित को भक्षण करता है और उसको निगल लेता है, निगलता है और दूसरे दिन देखो तो वैसा कि वैसा पीछे से आपको लगेगा कि ये तो पता नहीं इसमें पचाया नहीं, लेकिन वो पचा लेता है। उसके अंदर अगर फोड़ के देखोगे तो उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार हम जब श्रद्धा से भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान ये नहीं कहते कि मुझे 56 ही भोग चाहिए, बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयस्यति तदहं भक्त्युपरतः नश्नामि। भगवान पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, उसी से संतुष्ट होते हैं, परंतु होनी चाहिए उसके भीतर क्या है, श्रद्धा होनी चाहिए, उसके प्रति विश्वास होना चाहिए। इसी प्रकार भगवान सदाशिव ने वो संपूर्ण फल देने वाले भगवान सदाशिव ने उस यज्ञ की पूर्णाहुति की और पूर्णाहुति के बाद में जय जयकार करते हुए भगवान का नाम स्मरण करते हुए सभी वहां पर देवी देवता सब जितने आए थे यज्ञ में वो सबसे वहां सबने लोगों ने बड़े प्रसन्न होकर के वहां से प्रस्थान किया।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव,
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा,
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा,
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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा,
नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हरि बोल
नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण
देवा हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
हरे
नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव
यज्ञ होते रहना चाहिए। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञ के द्वारा हम परमात्मा को तृप्त करते हैं, इसलिए ज्ञान योग्य हो, कर्म यज्ञ हो, सत्संग रूपी यज्ञ हो, अन्न रूपी यज्ञ हो, यज्ञ करते रहना चाहिए। यज्ञ का प्रसंग पूर्ण हो जाता है और जो हमारी आदि पुरुष जो मनु जी के जो पांच संतान हैं उसमें से जो तीन कन्याएं हैं आकुति देहूति और प्रसूति, तीनों के ही वंश परंपरा का हम लोगों ने श्रवण किया। ये पहली बार नहीं है कि ये अंग्रेज लोगों ने कहा कि लेडीज फर्स्ट, हमारा तो वेद फर्स्ट है, हमारा तो वेद की परंपरा है, माताओं का सम्मान। मैंने प्रातःकाल जी कहा कि हमारी यहीं पर कहा जाता है कि मातृदेवो भव, ये माताओं का सम्मान है। ये माताओं का जो हमारे पूर्व माता है उनकी परंपरा का हम लोगों ने वर्णन श्रवण किया। मैत्री जी विदुर जी को कह रहे कि सनकाद्य नारदस्य, सनकादि ऋषि नारद अनेक अनेक ऋषि हुए, उन्होंने गृहस्थ में प्रवेश नहीं किया। और मैं आपको एक सुंदर यहां पर एक वृतांत सुनाता हूं। अथाह अथतः कीर्तित वंश पुण्य कीर्ति कुरुस्व स्वयंभो मनुष्यापि मनोहरे वंशानजन्म। कहते हैं कि उनके हम लोग परंपरा के वर्णन करते हैं, उनके दो पुत्र हैं जिनका नाम प्रियव्रतोन्नतापादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया दक्षायाम जगतः सुतो। मनुजी महाराज के दो पुत्र हैं, एक का नाम है प्रियव्रत और एक का नाम है उत्थानपाद। जिसको व्रत प्रिय है, जिसको भगवान प्रिय है, उसका नाम प्रियव्रत है। व्रत किस लिए किया जाता है? हम अपने यहां पर व्रत को किस लिए करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना। अपने यहां पर बहुत व्रत है, उपवास है, और अपने यहां पर एकादशी भी है, और एकादशी के दिन हम लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, जिसको हम फराड़ बोलते हैं, है ना। प्रतिदिन तो हम लोग केवल दाल रोटी बनाते हैं, साग भाजी बनाते हैं, और जिस दिन एकादशी होती है उस दिन अनेक अनेक पदार्थ बनाते हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए, परंतु उस दिन व्रत और उपवास जिनको प्रिय हो, ऐसे प्रिय व्रत। और एक है उत्तानपाद, जीव संज्ञक है, जिसके पाद ऊपर हो, उत्तान पाद ऊपर पाद हो और सर नीचे हो, ऐसे जो हमारे पूर्वज जो उत्तान पाद हैं, उनकी दो पत्नी हैं। जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरजिष्ठयो। उत्तान पाद की दो पत्नी है, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। और अपने को प्रिय क्या होता है? बोलते हैं कि अपने को तो रुचि ही प्रिय होती है, सुरुचि। अपने गुजरात में आप कहीं भी जाओ तो मैं कभी कभी लोगों को बोलता हूं कि आपको दूध पाक और कड़ी में एक ही स्वाद देखना हो तो आप गुजराती थाली खाओ। बराबर क्या? अब कुछ में गुड़ नहीं पड़ता है, उस पर विचार करना पड़ेगा कि कौन सी सब्जी में गुड़ नहीं पड़ता है। हम लोगों की रुचि होती है, स्वभाव है, क्योंकि ये परंपरा चली आ रही है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम जीवात्मा हैं, हम परमात्मा नहीं हैं। कभी आप कोई भूल जाते हैं नमक डालना, क्योंकि हमारा स्वभाव होता है, हमारी परंपरा है कि भगवान को भोग लगाने से पहले हम लोग उस भोग को नहीं पाते हैं। पाते हैं क्या? कोई कोई पाते हैं, उनकी बात अलग है, परंतु प्रायः जो संस्कारी लोग हैं, जो हम लोग पहले क्या करते हैं, भगवान की थाल लगाते हैं, और थाल लगाने के बाद में प्रसाद रूप से हम लोग उसको ग्रहण करते हैं। और कभी भूल से हमने नमक नहीं डाला हो सब्जी में या दाल में, तो भगवान कभी आपको कहता है कि ये थोड़ा सा नमक लाओ? नहीं कहते हैं। परंतु जब हम उसको हम भोजन करने बैठते हैं तो हम उसमें नमक डालते कि नहीं डालते हैं? हमको रुचि चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि हमारा स्वरूप, हमारा जो संबंध है वो मनुष्य से है, जीव से है। हमारा स्वभाव जीव स्वभाव है, हम कर्म से हम बंधे हुए हैं, उसको गलत मत समझना, उसको व्यर्थ मत समझना, क्योंकि सभी उस तत्व को पाने में असमर्थ होते हैं, उस तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसलिए बहुत से सज्जन ऐसे होते हैं कि जो भोजन बना उसको पा लेना चाहिए, क्योंकि अन्न ब्रह्म है, परंतु स्वाद लेने के लिए हम उस अन्न को पाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि हमारा स्वभाव उस मनुष्य स्वभाव से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो उत्तान पाद है उसकी दो पत्नी है, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। सुनीति से थोड़ा सा हम कम प्रेम करते हैं, वैसे उत्तान पाद भी वो सुनीति से थोड़ा सा कम प्रेम करते थे। उनका सबसे अधिक प्रेम था किससे? सुरुचि से था। और सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। देखने में तो जो उत्तम होता है वो तो वहां से सुरुचि से ही पैदा होता है। आज सुख हवन बनी हुई, आज बहुत सारा आनंद आए, वो आनंद मजा आ गया ना हवा में। और खाने के बाद में फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर मुखवास खाओ। और मुखवास सब एक जैसा होता है, फिर उसके बाद में कुछ नहीं, केवल भोजन के समय अपने को उसमें स्वाद आता है, उसके बाद में सब एक समान होता है। आप चाहे कुछ भी खाओ, हमारे बहुत अच्छे अच्छे संत होते हैं, हमारे यहाँ एक स्वामीनारायण संप्रदाय है, आप जानते होंगे उनके जो संत हैं ये कई पात्र में सब भोजन पाते हैं, और उनका तो छोड़ो, हमारे जो जैन संत हैं उनको तो बहुत बहुत प्रणाम है। उनका जो जीवन है अत्यंत कठिन जीवन, और बड़े बड़े करोड़पति लोग बाद में संन्यास लेते हैं, बाद में उनको क्या विचार आता होगा भगवान जाने, उनके विचारों को हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ छोड़ करके, मुझे तो सबसे बड़ी उनकी समस्या लगती है कि वो नहाते कम है। वो पता नहीं क्या परंपरा है भगवान जाने, परंतु उनका जीवन धन्य है, उनको हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं कि वो इतना तप करते हैं, उनका तपस्वी जीवन। इसलिए हमारे यहाँ की परंपरा का बहुत मर्यादा है, मान है, उनको देखते ही आपको किसी भी संत को देख करके, चाहे किसी संप्रदाय का हो, इसलिए स्वामीनारायण के संत लोग उस भोजन को चाहे कैसा भी हो, और फिर नहीं बोलेंगे उसमें कम नमक है या ज्यादा है या कुछ है। और इसका दूसरा भी कारण ये है कि वो स्वयं ही बनाते हैं, और जो स्वयं अपने लिए जो बनाएगा वो अच्छा ही बनाएगा। इस प्रकार की जो अपने को कभी रुचि होती है वो रुचि संतों में समाप्त हो जाती है, परंतु हम लोग, आप लोग यहाँ पर ग्रस्त बैठे हुए हैं, उनको वो रुचि रखनी भी चाहिए। बिना रुचि रखे आपका संसार आगे नहीं बढ़ेगा। संसार में आपको रहना है तो संसारिक नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। प्रातःकाल कहा गया ना कि अति लोभो न कर्तव्यम, लोभम नैव परित्यजेत। अति लोभ नहीं करना चाहिए, परंतु लोभ का परित्याग में नहीं करना चाहिए। जब तक आप संसार में हैं, आप संसारी हैं, आपका कोई कर्तव्य है, कोई दायित्व है, तब तक आपको उसके प्रति दायित्व निभाना चाहिए। जिसे आप यहीं बैठे रहेंगे, रोज सत्संग सुनेंगे, तो वो ऑफिस कौन चलाएगा? वहां भी जाना पड़ेगा, कोई ऑफिसर होगा, कोई ऑफिस का मालिक होगा, कोई बॉस होगा, कोई कंपनी का मालिक होगा, और वहां यहां बैठे बैठे रहेंगे तो वहां कैसे चलेगा? इसलिए दायित्व तो आपको निभाने के लिए आपको वहां पर जाना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ने हमारे यहां पर एक बहुत सुंदर एक सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया? हमारा इतना विशाल धर्म, इतना उदार धर्म मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई होगा। आपको मंदिर जाके प्रार्थना करना ही आवश्यक नहीं है, आपको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्राहेतो ताहेते महतो भया। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर उपाय बताया, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य राहते महतो भया। और दूसरा उपाय बताया, अर्जुन को कहा कि मैं तो युद्ध कर रहा हूं, मैं आप बोल रहे हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा कि माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते रहो और युद्ध करते। युद्ध का मतलब नहीं है कि आप युद्ध भूमि में जाकर युद्ध करो, आप तो नित्य निरंतर आप युद्ध में लगे हुए हैं। आप संसार में रहे हैं तो आपको युद्ध करते ही रहना है, क्योंकि संसार के साथ में आपको मिलजुल के चलना है, इसलिए आपका निरंतर युद्ध करना है। परंतु उस समय भी अगर आप परमात्मा का नाम लेते हैं तो मांस मर युद्ध से भगवान ने हम लोगों को बहुत छूट दे दी है। इसलिए आपको भी लोभम नैव परित्यजेत, आपको लोभ को छोड़ना नहीं है, परंतु अति लोभ नहीं करना है। इस प्रकार यहां पर उत्तानपाद इनका एक उनका पुत्र है ध्रुव, जो सुनीति से ध्रुव की उत्पत्ति होती है और सुरुति से उत्तम की उत्पत्ति होती है। और एक दिन की घटना है, एक दिन जो उत्तम है अपने पिता के गोदी में जाकर के बैठा हुआ है, और उसको देख करके ध्रुव की भी इच्छा होती कि मैं भी जाकर के पिताजी के गोद में जाकर के बैठूं। पिताजी के गोद में जाने का मतलब है कि सिंहासन पर बैठना, सिंहासन है राजा सिंहासन पर बैठे हुए हैं और वहां पर उनके गोद में खेल रहा है कौन? उत्तम। ध्रुव की भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता के गोद में जाकर के बैठूं, और जैसे ही ध्रुव पिता के गोद में जाकर के बैठने लगा उसी समय उसके सौतेले माँ ने देख लिया जिसका नाम सुरुचि है, और उसने कहा कि हे ध्रुव उतर जाओ वहां से, तुम्हें वहां पर बैठने का अधिकार नहीं है। अगर वहां पर बैठना होगा तो तुमको पहले तपस्या करनी होगी, और तपस्या करने के बाद में मेरे गर्भ से तुमको उत्पन्न होगा होगा मेरे गर्भ से जब तक तुम उत्पन्न नहीं होगे तब तक वहां पर बैठने के तुम अधिकारी नहीं हो। छोटा सा बालक है, 5 वर्ष की आयु है, और उस समय उस ध्रुव को ऐसा लगा कि मेरी माँ ने क्या कहा, और रोते 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 अपनी माँ के पास गए जाता है, और अपने माँ के पास जा करके रोते रोते कहता है कि माँ मेरे जो बड़ी माँ है उन्होंने मेरा बड़ा भारी अपमान किया, मुझे बड़ा पीड़ित किया। और रोते रोते माँ ने कहा कि हे ध्रुव जो सुनीति होती है चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो एक अच्छे ही विचार देगी, अच्छे ही आपको सीख देगी। और इसलिए वो माँ कहती है कि हे ध्रुव तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कहते कि हे तुम भले ही तुम्हारे माँ ने तुम्हारा अपमान किया हो परंतु तुम ऐसा करो तुम उस परम परमात्मा की जाकर के तुम आराधना करो, तुमको वो पद अवश्य प्राप्त होगा। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बालक को तपस्या करने के लिए प्रेरित करती होगी, ऐसा तो देखने में तो आता नहीं है। और कभी कभी संतों को कभी उस पद पर जाने के लिए अपने को अग्रसर होने के लिए कोई ना कोई कारण ढूंढने पड़ते हैं। भगवान शंकराचार्य साक्षात शिव अवतार, उनको पता था कि मुझे क्या कार्य करना है, परंतु अकेली माँ थी उसको कैसे समझाए। एक आध दो बार समझाने का प्रयत्न किया, कहा कि माँ मुझे सन्यास लेने की इच्छा है, तो माँ ने कहा कि नहीं बेटा मेरी देखभाल कौन करेगा, कैसे होगी क्या होगा। भगवान शंकराचार्य ने एक दिन वो लीला रची, स्नान करने गए थे नदी में और वहां पर एक उनको ग्रह ने पकड़ लिया, मगर ने पकड़ लिया, और मगर ने पकड़ने के बाद में वहां पर आवाज देने लगे कि हे माँ बचाओ बचाओ बचाओ। देखा कि मगर ने हमारे बच्चे को शंकर को पकड़ लिया है। शंकर बोलते हैं कि हे माँ कि मगर का ऐसा लगता है कि आप मुझे संन्यास देने की अनुमति दो, ये मगर मुझे छोड़ सकता है। माँ ने विचार किया कि पुत्र कम से कम जीवित तो रहेगा ना, संन्यास लेने पर भी अरे माँ तो उनकी भी होती है जो श्रेष्ठ सन्यासी होते हैं, सबकी माँ होती है, परंतु उन माताओं को नमस्कार है जिन्होंने पुत्र को संन्यास लेने की अनुमति दे दी। वो माता धन्य है। उस माता ने विचार किया कि कम से कम मेरा पुत्र जीवित तो रहेगा, और वहां पर उस शंकर को माता कहती है कि तुम चलो तुम संन्यास ले लो, और वहां से उस मगर ने छोड़ा है। और फिर भगवान शंकराचार्य संन्यास के लिए प्रस्थान करते हैं। वो तो अवतारी पुरुष है, परंतु यहां पर माता स्वयं कह रही है कि तुम जाओ और उस आराध्य पुरुष परमात्मा की उपासना करो, और उपासना करने के लिए तुम चले जाओ वन में, और वन में जाकर के उस परमात्मा की उपासना करो। और ध्रुव कुमार वहां से प्रस्थान करते हैं वन की ओर। अब कहां जाना है क्या करना है कुछ पता नहीं है, 5 वर्ष के बालक को क्या पता होगा, परंतु अंदर की इच्छा हो, मन अंतकरण में उत्कंठा हो, आपको परमात्मा के पाने की जिज्ञासा हो, अंदर से आपको लगे कि परमात्मा को पाना ही है, तो फिर रास्ते अपने आप बन जाते हैं। आपको कोई भी कार्य करना हो ना जब दुनिया में, प्रायः यहां बैठे हुए लोग इनके पूर्वज पता नहीं कहां कहां से आए हैं, खास करके जो रेगिस्तान है ना, जहां पर कुछ पैदा नहीं होता है परंतु इच्छा शक्ति है, कच्छ जहां कुछ नहीं होता था, आजकल तो मोदी जी ने वहां पर जल पहुंचा दिया है ऐसा सुनने में आ रहा है। मोदी जी भी कहते हैं ना अपने अपने भाषणों में कि यहां पर जल लाने वाले, ठीक है अब तो हो गया, परंतु अपने बहुत पहले काल पहले वहां पर कुछ नहीं होता था, वहां पर ये जो आपकी खजूर के पेड़ होते थे वहां से लोग आए, उनके अंदर एक उत्कंठा थी, एक आत्मविश्वास था कि इस नगरी में जाएंगे जो महालक्ष्मी की नगरी है, मुम्मा देवी की नगरी है, बाबुलनाथ बाजू में बैठे हुए हैं, उनके यहां पर जाएंगे तो हम वहां पर सुखी हो जाएंगे, उनके अंदर आत्मविश्वास था, तभी तो आपके पूर्वज यहां पर आए। और यहां पर पहले कुछ नहीं था, अंग्रेज भी यहां पर आए, उन्होंने देखा कि स्थान दिव्य है, ये हमारी जो मुंबई है ना, मुंबई जिसको बोलते हैं, मुंबई कहते हैं, कुछ भी कहो, ये साक्षात महालक्ष्मी की नगरी है, साक्षात भगवान शिव की नगरी है, साक्षात यहां पर ये गणेश जी की नगरी है, ये बड़ी पवित्र नगरी है, बड़ी अद्भुत नगरी है दुनिया में, मैंने दुनिया बहुत देखी है परंतु ऐसी नगरी बहुत कम देखी है, नहीं देखी नहीं। जितना सत्कर्म आपके बंबई में होता है उतना किसी अपने भारतीय बाहर की विदेश की तो बातें छोड़ो, वहां तो हम कहते नहीं है, वहां तो 8 दिन में एक बार पहुंचते हैं लोग मंदिर में, और मंदिर में अगर आप फोन करो तो वहां पर एक रिकॉर्डिंग लगी रहती है, अगर आपको ये चाहिए तो ये दबाओ, ये तो ये बटन दबाओ, ये चाहिए तो ये बटन दबाओ, और आखिर में आता है कि अगर आपको दर्शन करना है तो आप रविवार को शाम को 4 बजे आना, मंदिर खुला रहेगा, ये अतिशोक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसी वहां पर चलता है, भारत के दूसरे नगर में जाओ तो ऐसा सत्संग नहीं होता है, कम होता है। और भारत के दूसरे नगर में नहीं, आप तीर्थ क्षेत्र में जाओ तो वहां पर भी नित्य प्रवचन और स्वाध्याय नहीं है। पहले वाराणसी विद्यालय का स्थान था, अब वहां भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, परंतु बंबई में धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले यहां पर केवल सत्संग होता था, 8-10 साल पहले से स्वाध्याय भी प्रारंभ हुआ, बड़े बड़े संत लोग आकर के, ऐसी महानगरी और कहीं नहीं है, इसीलिए सब हमारे पूर्वज यहां पर आए और आकर के सुखी हुए कि दुखी हुए। कहावत है मुंबई में रोटलो मळे छे ओटलो नथी मळतो, केवाय ना बोलते थे पहले, मुंबई में रोटलो मळे छे पण ओटलो नथी मळतो, ओटला भी सबको मिलने लगा है। ऐसी अद्भुत नगरी में आप जब आए हैं तो आपके अंदर एक कामना थी, और इसी ऐसी कामना पहले से ही चली आ रही है। ध्रुव के भी मन में था कि मां ने जो बात को कहा है वो निश्चित होकर के रहेगा, और ध्रुव कुमार वहां से निकल जाते हैं वन के लिए, प्रस्थान करते हैं और बोलते हैं कि जैसी चाह वैसी राह, जिसको चाह होती है उसको राह मिल जाती है, और वन की ओर प्रस्थान करते हैं, और वन की ओर जाते जाते उनको वहां से एक कोई वीणाधारी कोई सज्जन दिखते हैं, और क्या कहते हैं, नारायण 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 स्वर आ रहा है सामने से। ध्रुव जी ने देखा कि सामने से साक्षात नारायण आ रहे, नारद जी आ रहे हैं, और नारद जी आए और पूछा कि हे ध्रुव तुम कहां जा रहे हो, उसने कहा कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं, वन में जाऊंगा तपस्या करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा, और मेरी अपनी इच्छा है जो मेरा मन में है, संकल्प है, भगवान के सामने रखूंगा। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हें कुछ पता है कि कैसी तपस्या होती है, भगवान नारायण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ध्रुव ने कहा कि भगवान पहले मुझे थोड़ा सा संदेह था, पहले जब मैं चला तो उस समय थोड़ा सा संदेह था कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अब विश्वास हो गया कि भगवान निश्चित मिलेंगे। नारद जी ने कहा कि अब निश्चय कैसे तुम्हें आया। ध्रुव ने कहा कि जो आपका जो दर्शन हुआ जब जिसको आपका दर्शन हुआ हो उसको नारायण न मिले ऐसा हो नहीं सकता है। नारद जी ने विचार किया कि छोकरा तो बड़ा बुद्धिमान है, इसने हमको तो बांध लिया, अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और उस समय नारद जी ने कहा कि ऐसा करो, तुम जाते हो यहाँ से, तुम पहले यहाँ से जाने पर तुम यहाँ से जाना और जमुना के तट पर सुंदर एक उपवन है, वहां पर जाकर के तुम वहां पर तपस्या करना, परंतु तपस्या ऐसी नहीं करना। भगवान का वन को उनको अच्छी तरह से सब समझाया। प्राणायामेन त्रिवृतः, बोलते हैं कि आप वहां पर जाकर के प्राणायाम करना, ये क्रम है। आप जब पूजा करते हो, पाठ करते हो, जब ध्यान करना हो तो आपको पहले सबसे पहले ओंकार के साथ में प्राणायाम करना चाहिए, तो आपके मन स्थिर हो जाता है, आपकी मन की गति स्थिर होती है। और फिर जब मन की गति स्थिर हो जाए उस समय आपको उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, किसका, जिसका आपको इष्ट है, जिसको आप इष्ट मानते हैं। आपका इष्ट कोई भी हो सकता है, हमारे यहां पर उसकी कोई निश्चित, हमारे यहां पर कोई रेखा नहीं है कि आप इसी को मानो। दूसरे धर्मों में ये प्रतिबंध है। हमारा महान धर्म क्यों है, इसका कारण बतलाते हैं कि हमारे यहां पर किसी बात का प्रतिबंध नहीं है कि आप शिव मंदिर में जाओ कि न जाओ, आप कृष्ण के मंदिर में जाओ, आप विष्णु के मंदिर में जाओ, आप गणेश के मंदिर में जाओ। परंतु हम इतना तो कहते हैं कि जहां मुर्दे गड़े हुए हो ना वहां मत जाना। भगवान आपके पास में बहुत हैं और सर्वत्र व्यापक है। आपके अगर भगवान आपके हृदय में वो अगर विराजमान है तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जाना हो तो जहां अपना हो ना वहां जाना, अपना हो वहां जाना, जहां आपका संबंध हो वहां जाना। जो जितने देवता हैं उनका हमारा सीधा सीधा उनसे संबंध है, क्योंकि वो हमारे परम पिता है। जब आप लोग बच्चों को, ये माताएं जब बच्चों को भगवान के विषय में जब सुनाती है, समझाती है, तो हमारे यहां पर एक बहुत सरल एक श्लोक है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बंधु दविनम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हम सबको आता है। और वो कौन सा देव है जिसके सामने खड़े हो जाओ। अगर हम गुरु को मानते हैं तो गुरुजी के सामने गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत सीधा सरल, कहीं भी जाओ अपना संबंध है कि नहीं देखो। आप किसी विशेष समारोह में जाते होंगे, आप पहले देखते होंगे कि हमारा इनका संबंध है कि नहीं है, हमें उसका आमंत्रण मिला है कि नहीं मिला है। जब आपको आमंत्रण मिला हो, आपका संबंध हो, तो आप निश्चित अपना समय निकाल करके, हमारा आपका यहां पर क्या संबंध है बताओ, हमारा और आपका संबंध है धर्म का संबंध है, उस परमात्मा के हम पुत्र है, उसके हम लोग बच्चे हैं, और इस कारण से हम लोग यहां पर बैठ करके उसको जानने के लिए हमारा संबंध है कि नहीं संबंध। जहां अपना संबंध हो वहां पर जाना चाहिए। इस प्रकार वहां पर ध्रुव जी कहते हैं कि हे नारद जी, अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि मुझे वो परमात्मा की अवश्य प्राप्ति होगी, क्योंकि आप हमें मिले हैं। और नारद जी ने उनको बताना शुरू कर दिया, पहले प्राणायाम करो, और प्राणायाम करने के बाद में श्रीवत्स सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम, भगवान का ध्यान करना। और भगवान का ध्यान करते करते उन्हें भगवान के अपने उस मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित करना और उनका पूजन भी करना। और उसके लिए अपने यहां पर कहा जाता है कि गुरु मंत्र होना चाहिए, गुरु मुख से मंत्र होना चाहिए। मंत्र तो जितने हैं वो सब परमात्मा के हैं, परंतु वो गुरु मुख से श्रवण करने का अपने यहां पर वो परंपरा है। गायत्री सब जानते हैं, गायत्री मंत्र को सब जानते हैं ना आजकल। तो पहले गायत्री मंत्र को ये जो ब्राह्मण है, आचार्य है, जो बालक गायत्री मंत्र लेता था उसको पहले आच्छादन किया जाता था, उसको आच्छादन करके, और वही मंत्र जो हम सब जानते हैं उसको कान में कहा जाता था। इसलिए कि वो गुरु और शिष्य की वहां पर परंपरा है, और वहां से वो जो शिष्य होता था गुरु को अपना आचार्य मानता था, उस गुरु को जिन्होंने मंत्र दिया है उनको अपना गुरु मानता था, और वहां से वो फिर प्रवेश करता था कहां पर, गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए। इसलिए अपने यहां पर कहा जाता है कि ब्राह्मण को द्विज होना पड़ता है, ब्राह्मण को ब्राह्मण होने के लिए द्विज होना पड़ता है। यहां पर भी ध्रुव कुमार नारद जी ने कहा कि हे ध्रुव, कितना करने से पहले एक तुमको मैं मंत्र देता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रे नानेन देवस्य,
कौन सा मंत्र बोलो ना, थोड़ा सा जोर से सबको थोड़ा सा उत्साह आ जाए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे सबसे प्यारी प्यारी हरी हरी हे महिमा सबसे प्यारे प्यारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
वासुदेवाय
हरि वासुदेवाय
वासुदेवाय हरि वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि
वासुदेवाय हरि
वासुदेवाय हरि वासुदेवाय
वासुदेवाय हरि वासुदेवाय
हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
हरे कृष्ण
कन्हैया लाल की जय।
नारद जी गुरुमुख हुए, ऐसी तो हमारी परंपरा है, गुरुमुख होना चाहिए, गुरु से उस मंत्र को श्रवण करना चाहिए। और नारद जी ने अपने परम शिष्य जिनका हृदय बिल्कुल विशुद्ध है, कोई वासना नहीं, कोई काम नहीं, किसी प्रकार का द्वेष नहीं, निर्मल अंतकरण और भावना केवल परमात्मा को प्राप्त करने की, अगर ऐसी भावना हो तो सामने से चल करके आने वाले ऐसे महापुरुष होते हैं। नारद जी आए और उन्होंने कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र दिया और उसके बाद में कहा कि मंत्रे नाने देवस्य, इस मंत्र को लेकर के कुरिया द्रव्य मयम बुधा, इस मंत्र से ही संपूर्ण उपचार करना। उस समय तो ध्रुव 5 वर्ष के हैं, उनका ना कोई यज्ञ पर संस्कार हुआ है, ना उन्होंने विद्याध्ययन किया है, ना किसी गुरुकुल में गए हैं, कहीं नहीं है, अभी उनको कुछ पता नहीं है संसार का। और जिनको संसार में उस परमात्मा के विषय में पता न हो, अगर गुरु आपको गुरु मंत्र दे, एक ही गुरु मंत्र से आपको यहां पर कहा गया है कि मंत्रे नानेन देवस्य कुरिया द्रव्य मयम बुधः, एक ही मंत्र से सपरिया विधेर द्रव्य ही, कहते हैं कि अलग अलग द्रव्य से, बोलते देश काल विभागवत। यहां पर बहुत सरल प्रकार से नारद जी ने ध्रुव को उपदेश दिया कि ये जो मंत्र है इसके द्वारा भगवान की आराधना करना। ये नारद जी का दिया हुआ मंत्र है, हमारा किसी का दिया हुआ नहीं है, ये नारद जी का दिया हुआ मंत्र है द्वादश अक्षर। किसी को अगर कोई गुरु मंत्र न मिला हो तो इससे भी काम चल सकता है। और नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पास में जो द्रव्य हो, अक्षदम समर्पयामि, जलम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, धूप दीपम समर्पयामि, एक ही मंत्र, ओम नमो भगवते अर्घ्यम समर्पयामि, ओम नमो भगवते दीपम समर्पयामि, ओम नमो भगवते नैवेद्यम समर्पयामि, आप एक ही मंत्र से भगवान की पूजा कर सकते हो, आपको अनेक मंत्र की आवश्यकता नहीं। क्योंकि उस समय ध्रुव जी को पता नहीं था गणानाम का गणपति को, ये कहीं गए नहीं थे गुरुकुल में, गुरुमुख हुए नहीं थे, इसलिए उनको कोई मंत्र के विषय में कोई ज्ञान नहीं था, परंतु बहुत सरलता से नारद जी ने कहा कि इस मंत्र से ही भगवान की आराधना करना, और जो आपको देश काल के अनुसार जो वहां पर द्रव्य मिले उससे, इतनी सरलता और कहां होगी है? हमारे यहां पर तो यहां पर लिस्ट बनती है, यादी बनती है कि ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, वो भी नहीं आना चाहिए, और ये आने के बाद में कोई चीज आपको अगर भूल जाते हैं तो ब्राह्मणगण क्या करते हैं, अक्षत हाथ में देते हैं, सुवर्णम समर्पयामि है बोलते, सोने का भाव करो उसके अंदर, स्वर्ण का भाव किसमें करते हैं हम लोग, अक्षत में करते हैं ना। और भगवान अगर मूर्ति न मिले, एक वहां पर क्या रख देते हैं, सुपारी रख देते हैं, वो सुपारी के भगवान है, वो सुपारी में हमने भगवान का अभिनिवेश किया, हमने क्या किया, सुपारी में ही भगवान गणेश को मान लिया, सुपारी में ही हम लोगों ने नवग्रह को मान लिया। ये देश और काल है, ये हमारे यहां सुविधा है कि नहीं है, इतना सरल धर्म और कोई है क्या, नहीं है। इसलिए अपने धर्म में कहते हैं कि अपने धर्म में ही चाहे जैसा भी हो, अपना धर्म ही श्रेष्ठ है, और ऐसे धर्मों को हमारे नारद जी ने हम लोगों के लिए, हमारे में से एक ध्रुव है जो कुछ नहीं जानता है, और उसको बतलाने के लिए, और बोलते हैं कि यहां से जाओ, और नारद जी की उस समय ध्रुव ने परिक्रमा की, और नारद जी ने कहा कि यहां से तुम चले जाओ, और यहां से गंगा तट पर, यमुना के तट पर बहुत सुंदर एक स्थान है जिसको मधुवन कहते हैं, वहां पर जाओ, वहां पर साक्षात भगवान का वास है। और ध्रुव अपने मधुवन की तरफ चले जाते हैं, और नारद जी वीणा बजाते बजाते हुए उत्तानपाद की नगरी में, महल में आते हैं, राजप्रसाद में आते हैं, और राजप्रसाद में आकर के जब तक पता लग गया उत्तानपाद को कि हमारा छोटा सा बालक वन में चला गया है, नारद जी को जब दिखा, नारद जी को पूछा कि हमारा ध्रुव जो है वन में चला गया है, और भगवान की प्राप्ति करने के छोटा सा बालक है, वो क्या तपस्या करेगा, वो कैसे भगवान को प्राप्त करेगा, नारद जी ने कहा कि उसकी चिंता मत करो, वो अवश्य प्राप्त करके आएगा, उसकी चिंता मत करो। और नारद जी आगे गए और जाकर के ध्रुव उस वन में जाकर के बैठ जाते हैं, और बैठ करके वहां पर भगवान का आराधना की, और उन्होंने तप प्रारंभ किया, कहते त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ भद्राशरः, बोलते कि तीन दिन में एक बार उस वन में जो भी फल होते थे उसको ग्रहण करना, और तीन दिन तक कुछ नहीं खाना, केवल तीन दिन में एक बार फल खाने और भगवान की पूजा करना। ऐसे एक महीना बीत गया, दूसरा महीना आया, दूसरे महीने में उन्होंने केवल साग और सब्जी खाना शुरू किया, छह छह दिन के बाद में। फिर तीसरा महीना आया तो केवल जल पी करके, वो भी 21 दिन में, 24 दिन में एक बार जल पीना। उसके बाद में चौथा महीना आया, केवल ये वायु भक्षण करना। किस प्रकार का, उन्होंने ऐसे करते करते पांच महीने बीत गए, और तपस्या ध्रुव की छठे महीने में प्रवेश की। उस समय नारद जी ने सब बतला दिया था, कैसे प्राणों का निरोध करना चाहिए, कैसे प्राणायाम के द्वारा समाधि में जाना चाहिए, और उस समय ध्रुव ने उस प्राणायाम के द्वारा उस अपने प्राणों को अपने उस मस्तिष्क में चढ़ाया, अपने ब्रह्मरंध्र में चढ़ाया, और वो समस्ती प्राण, जो प्राण है ना, ये एक वेताई व्यष्टि जो हम लोग लेते हैं उसको व्यष्टि बोलते हैं, परंतु आता है वो कहां से, समष्टि से आता है, हमारे लिए अलग से वो ये कौन सा जो जीवन वायु है ऑक्सीजन, ये अलग से नहीं बनता है, अलग से कुछ किसके लिए बनता है, जो बाहर का वायु नहीं ग्रहण कर सकता है, परंतु ये समष्टि जो वायु है, वो समष्टि वायु जब अपने पास में आता है, और उस समय समष्टि वायु को अवरोध किया, जो हमारा श्वासोच्छ्वास है, उस समय जो मनुष्य है, जो देव है, वो समस्त जगत में ऐसा लगा कि हमारे पास वायु बची नहीं, उसमें हाहाकार करते हुए सब लोग भगवान के पास पहुंचते हैं, वैकुंठ जाते हैं और वहां पर बोलते हैं कि हे भगवान, हम लोग तो सब आप थोड़ी देर में हमारे मृत्यु होने वाले हैं, क्योंकि हमारे श्वासोच्छ्वास रुक गई है, क्योंकि हम लोग प्राणी नहीं ले सकते हैं, वायु नहीं ले सकते हैं। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मेरा एक प्रिय भक्त मेरी साधना में लगा हुआ है, अभी मैं यहां से जाता हूं। और भगवान साक्षात वहां से आते हैं और जहां पर ध्रुव अपनी तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या के स्थान पर आकर के भगवान खड़े होते हैं। परंतु भगवान जब आए तो ध्रुव तो समाधि में लगे हुए थे, उन्होंने भगवान का ध्यान किया हुआ था, भगवान उनके हृदय में थे। भगवान आकर के बहुत देर तक वहां पर खड़े हुए, उनको लगा कि तो मेरा भक्त तो मेरे को देख ही नहीं रहा है, तो क्या करे। भगवान ने जो ध्रुव जो ध्यानस्थ भगवान का चिंतन कर रहे थे, जिस मूर्ति का चिंतन कर रहे, उन्होंने वहां से उसको धीरे से उसको बाहर निकाल लिया। और जब जगह रिक्त हो गई, उस समय ध्रुव को लगा कि एकदम से आंखें खुल गई, और जैसे ही आंखें खोलते हैं उसी समय वहां पर सामने भगवान दिखते हैं। जैसे ही भगवान दिखे, ऐसे ही जैसे ही भगवान दिखे और भगवान के पास में आकर के भगवान ने कहा कि जो भगवान के पास में जाओ तो कोई ना कोई भगवान की स्तुति करनी चाहिए, भगवान की स्तुति करनी चाहिए। इसलिए अब भगवान की स्तुति कैसे करें, क्या करें। केवल नारद जी ने एक मंत्र बताया था, अब उससे तो काम नहीं चलेगा, सामने जो भगवान आए हैं। तो उसी समय भगवान ने विचार किया कि हमारा जो ये भक्त है उसको वाचा देनी थी, और भगवान ने अपना जो शंख है वो निकाला और कपोल पर रख दिया। और भगवान जब जब वो शंख को स्पर्श हुआ गालों पर, उसी समय ध्रुव की जो वाणी प्रस्फुटित हुई और वहां पर भगवान की वहां पर स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्यमो वाचि मां प्रसोक्तां संजीवयत्ति किल शक्तिधरः सुदाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणात्पवादिन् प्राणान् नमो भगवते यतोभ्यम्। भगवान की स्तुति करने लगे, ध्रुव भगवान की स्तुति प्रारंभ की और बड़ी अनंत स्तुति करने के बाद में भगवान ने कहा कि ये ध्रुव, तेरे मन की बात मैं समझता हूं, तेरे मन में जो कामना है उसको मैं समझता हूं। और उसी समय कहा कि तथास्तु करके वहां से भगवान वरदान देकर के चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अभी तक किसी को न ऐसा मिला, क्योंकि अभी तक ऐसी तपस्या भी कभी किसी ने की थी। ब्रह्मा जी के पुत्र मनुजी महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र, और मनुजी के दो पुत्र जिनके नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत। अभी सृष्टि के बना बहुत समय नहीं हुआ था, उस समय तो कोई तपस्या ऐसी की नहीं थी, उसके बाद में शायद बहुत लोगों ने की होगी, लेकिन कहीं उल्लेख नहीं दिखता। परंतु ऐसी तपस्या करने वाला वो जो ध्रुव, भगवान ने कहा कि तुम्हें वो पद मैं दूंगा जो अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, जहां जाने के बाद में फिर से लौट करके नहीं आना होता है, ऐसा तुम्हें पद देता हूं। और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, और अंतर ध्यान होने के बाद में उसको ध्रुव को लगा कि अब वहां से भगवान का संकीर्तन करते करते भगवान का, फिर उसने सोचा कि अब ध्रुव ने सोचा कि ऐसा चुपचाप नहीं जाना चाहिए, हम लोग चुपचाप बैठते हैं तो मैं यहां से देखता हूं, ध्रुव को लगता है कि महाराज अभी कितने बजे होंगे, हम लोगों को लगता है कि जल्दी कथा पूरी हो जाए। परंतु ध्रुव को लगा कि अब मैं भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का भजन करते हुए मैं अपने पिताजी की और वहां पर प्रस्थान करो, अपने शहर की और प्रस्थान करो। तो
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय,
वासुदेवाय हरि वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवा हरि बोल
नमो भगवते वासुदेवा
ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो हरि ओम नमो नारायण हरि ओम
नमो नारायण
ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय हरि बोल
वासुदेवाय हरि वासुदेवाय
वासुदेवाय हरि वासुदेवाय
वासुदेवाय हरि वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ
नमो भगवते
वासुदेवाय हरि वासुदेवाय
वासुदेवाय हरि वासुदेवाय
हरि
वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
बोलो कृष्ण कन्हैयालाल की जय
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने वरदान दिया था कि तुम्हें तो मेरा पद प्राप्त होगा ही होगा, परंतु जब यहां से लौट करके जाओगे तुम्हारे पिता जब वन के लिए प्रस्थान करेंगे उसके बाद में तुम 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे और उसके बाद में जो मेरा परम पद प्राप्त करोगे, जिस प्रकार वर पाकर के ध्रुव वापिस आने लगे, जब नगर के पास पहुंचे तो उनके पिताजी को पता लगा कि हमारा ध्रुव तपस्या पूर्ण करके वापस लौट रहा है। उनको सहसा विश्वास नहीं हुआ कि काल के मुख से हमारा ध्रुव छोटा सा बालक कैसे वापस आ सकता है, परंतु सब लोगों ने जब बोलना शुरू कर दिया उस समय ध्रुव जी जब नजदीक आ रहे थे उस समय राजा स्वयं उत्तानपाद अपने समस्त लोगों के साथ में नगर से बाहर आते हैं और ध्रुव का स्वागत करते हैं। जैसे ही मन में विचार कर रहे थे कि मैंने ये क्या मांग लिया, पश्चाताप हो रहा था कि भगवान से मैंने उनकी मुक्ति मांगनी चाहिए थी, मुझे उनके स्वरूप की प्राप्ति मांगनी चाहिए थी, परंतु हमने उनको क्या मांग लिया, ये सिंहासन मांग लिया। परंतु उस समय उनको चिंतन हो रहा था मेरी सौतेली माँ ने मुझे इस बात को बताया था, इसलिए उसका चिंतन होता रहा। और चिंतन करते करते ध्रुव नगर के पास में आते हैं, वहां पर राजा उनके पिताजी सभी लोगों के साथ में उपस्थित होते हैं और साथ में दोनों ही माता सुरुचि और सुनीति भी वहां पर उपस्थित हैं। ध्रुव ने विचार किया, अगर मेरी सौतेली माँ ने मुझे ये अपशब्द नहीं कहे होते, मुझे कटु शब्द नहीं कहे होते, तो मैं तपस्या करने नहीं जाता, इसलिए उनकी कृपा है। जीवन में कभी कभी कोई मोड़ आता है, उसका कोई कारण कोई और होता है, परंतु हमारा कल्याण करने वाला होता है।
कल्याण करने वाले दो वचन, एक तो कटुवचन था, ये कटुवचन के द्वारा उनके मन में उस परमात्मा को करने प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई और उसमें प्रोत्साहित किया उनके मां ने कि हे बेटा तुम जाओ वन में जाओ तपस्या करो और तपस्या करने के बाद में उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करो जो सब कुछ देने वाला है। दुनिया में मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया के लोग आपको क्या देंगे, जिसने ये सुंदर शरीर अपने को प्रदान किया किसने दिया, अमूल्य है अमूल्य। जब कोई रुग्ण होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और हम कहते हैं कि जितना धन खर्च हो जाए कुछ चिंता मत करो परंतु तो मैं स्वस्थ हो जाऊं। हम लोग कहते हैं ना कि कितना मूल्यवान शरीर है, एक आंख एक कान एक जिह्वा नेत्र, हमारा शरीर कितना मूल्यवान है, उसकी कीमत हम तभी करते हैं जब उसके अंदर कोई विकार आता है। परंतु ये दिया किसने है, उस परमात्मा ने दिया, उसकी कृपा है। और ये अपने को कभी कभी समझ में आता है और वो समझ में आया था ध्रुव जी को, उन्होंने विचार किया कि अगर मेरी माँ मुझे कटुवचन नहीं कहती तो कभी भी मैं इस मार्ग पर नहीं चलता, और उस माँ ने उसको प्रोत्साहित किया तो उस परमात्मा की ओर जाने के लिए। तो सबसे पहले ध्रुव अपने सौतेली की माँ के चरणों में वहां पर नमस्कार करते हैं और सुरुचि ने उनको आलिंगन में लिया है और आलिंगन में लेकर के उसको बड़े प्रेम किया है, बड़े दुलार किया है। और उसके बाद में अपनी माँ के पास जाते हैं, उस माँ से तो कहना ही क्या, जिसने अपने पुत्र को उस परमात्मा के एक साथ मिला हुआ देख करके जान करके उसकी आनंद की क्या सीमा रही होगी, जिसका पुत्र इतना महान बन गया हो उनकी माँ के मन में क्या आया होगा। तो इस प्रकार वहां पर पिताजी से मिले और उसके बाद में वो नगर में आते हैं और नगर में आने के बाद में वो बड़े होने लगते हैं, उनका विवाह हो जाता है। और विवाह होने के बाद में धीरे धीरे वो दोनों बड़े होने लगते हैं। उनका एक भाई है जिसका नाम उत्तम है, उसका विवाह नहीं होता है। और एक दिन वो वन में जाता है और वन में जाने के बाद में उसका यक्षों के साथ में युद्ध होता है, यक्ष होते हैं उनके साथ में युद्ध होता है और वो जो उत्तम है वहां पर मारा जाता है। कहने का भाव ये है कि जो सुरुचि से पैदा होगा देखने में तो बड़ा उत्तम होगा, क्या होगा, जिसके जो सुरुचि से जो अपने स्वार्थ से जो अपने मन से जो हमारी कल्पना है उससे जो पैदा होगा उसका नाश निश्चित है। उत्तम देखने में तो जब अच्छा लगता है परंतु उस उत्तम का वहां पर उसे मारा गया और वहां पर यक्षों ने उनको मार दिया। और जो ध्रुव होता है जो सुनीति से उत्पन्न होता है, जिसकी नीति अच्छी हो उससे जो उत्पन्न होता है उसका नाश नहीं होता है, वो अमर हो जाता है। यहां पर इस दृष्टांत से हम समझते हैं। और उस समय वो जो उत्तम वहां पर मारा गया परंतु वहां पर ये ध्रुव को थोड़ा सा यद्यपि भगवान का दर्शन होने पर ऐसा नहीं होना चाहिए, जब भगवान का साक्षात्कार हो जाए, परंतु भगवान का साक्षात्कार ध्रुव तो हुआ था परंतु मन में कुछ कामना थी ना, कामना कि मैं राज सिंहासन प्राप्त करूं, ये कामना थी। और जब तक कामना आपके मन में रहेगी तब तक आपको मुक्ति को प्राप्त आप नहीं हो सकते हैं, आपको भगवान सामने आपके आ जाए। अब ये बताओ, भगवान को हम देखने से भगवान मानते हैं, हम भगवान को हम साक्षात्कार कर सकते हैं कि भगवान को जानने से साक्षात्कार हो सकता है। अगर भगवान यहां पर आ जाए तो हमें मुक्ति प्राप्त होगी क्या? आप लोगों में से बहुत से लोग बोलेंगे कि भगवान का दर्शन हो जाए क्यों नहीं होगी, तो आप भगवान को नित्य देखते कि नहीं देखते हैं? आप कहीं ना कहीं मंदिर में जाते तो होंगे ना, जाते हैं तो वहां किसको नमस्कार करते हैं,
आपके घर में जो पूजा है, जो ठाकुर जी है, उसको आप क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं ना? भगवान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो आपको वहां पर सद्य मुक्ति होनी चाहिए। भगवान को समझते नहीं है, भगवान को पहचानते नहीं है। भगवान के वास्तविक रूप को, वास्तविक उसका स्वरूप है, उसकी हमें पता नहीं है, और वो शास्त्र बतलाता है। महाभारत हो रहा था, 18 अक्षोणी सेना वहां पर लगी हुई थी, वहां पर भगवान जिनको हम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जिसकी कथा हम कर रहे हैं, वो कौन है? साक्षात पूर्ण परब्रह्म है कि नहीं है? भगवान श्री कृष्ण को हम क्या मानते हैं? साक्षात पूर्ण परब्रह्म, षोडश कला युक्त परमात्मा अगर है तो भगवान श्री कृष्ण हम मानते कि नहीं मानते? वहां पर कितने लोग थे? 18 अक्षोणी वहां पर लोग थे, उनमें से कितने लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान परमात्मा मानते थे? अर्जुन भी सखा मानता था, सखा शुरू से प्रारंभ में, तो ये तो मेरा सखा है, संबंधी है, उसको भी पूर्ण उसको ज्ञान नहीं था परमात्मा का। जब भगवान ने उस अर्जुन को विश्वरूप दिखाया, नांदम न मध्यम न पुनस्तवादी, जब ऐसा विश्वरूप दिखाया तो उसकी आंखें खुल गई कि ये विश्वरूप, ये तो स्वयं परमात्मा है। ऐसे कोई कोई जानने वाला होता है, उसमें से सबको जानने में नहीं आता है, इसलिए शायद भगवान को कहना पड़ा होगा, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद में वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म के बाद में जब अपना हृदय परिशुद्ध होता है, जब तक अंतकरण निर्मल नहीं होगा, उस परम पिता परमात्मा का जो विशुद्ध ब्रह्म है उसका आपको ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपके अंदर गांठ पड़ी रहेगी। और शायद हो सकता है, ये मेरा मानना है, ये किसी ने कहा नहीं यहां पर, परंतु मेरा मानना है कि जिसको साक्षात परमात्मा का दर्शन हुआ हो और भाई के मृत्यु के बाद उसको क्रोध आया, भयं क्रोध, और ये अनेक अनेक यक्षों का संहार करने लगे ध्रुव, क्योंकि भाई महाराज आया है इसलिए उनको थोड़ा क्रोध आया है। और वहां पर साक्षात कुबेर जी आते हैं और कुबेर जी आके उनको समझाते हैं, और उनको कुबेर जी को आके समझा करके उसके बाद में पुनः वो युद्ध शांत होता है। और युद्ध शांत होने के बाद में अब 36,000 वर्ष ऐसे निकल गए, सुख के दिन बहुत जल्दी निकलते हैं, जवानी ऐसी फट से निकल जाती पता ही नहीं लगता है, अरे अभी अभी तो ये घटना हुई थी, ऐसा लगता है ना, जो अच्छे दिन हैं पता ही नहीं लगता है। और ऐसे ही अच्छे दिन, सुंदर सुंदर दिन, वो पता नहीं कब चले गए, कोई पता ही नहीं, 36,000 वर्ष ऐसे एक क्षण की तरह बीत गए। और ध्रुव जी को पता लगा कि हमारा काल तो समाप्त हो गया है, हमें तो अब तपस्या करने के लिए जाना चाहिए। और ध्रुव उस समय, उसी समय पहले काल में ऐसा होता था कि जो राजा होते थे वो अपने धर्म का पालन करते थे, जो आश्रम धर्म है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास के लिए प्रस्थान करते थे। बड़े बड़े राजाओं की आप कथा श्रवण करेंगे तो आपको हमेशा मिलेगा कि राजा ने अपना राजपाट छोड़ दिया, अपने पुत्र को सौंप दिया और कहां चले गए, वो भगवान की भक्ति के लिए, तपस्या करने के लिए चले जाते थे। इसी प्रकार ध्रुव ने भी उस परंपरा को रखा। 36,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद में ध्रुव ने प्रस्थान किया, कहां? बद्रीनाथ की तरफ, हिमालय में, और वहां पर जाकर के बहुत दिनों तक उन्होंने तप किया। और वो काल आ गया जो भगवान ने निश्चित किया था। वहां पर भगवान के दो पार्षद एक विमान को लेकर के आ गए, और विमान को लेकर के आए और उनको कहा कि हे ध्रुव, जैसे भगवान का आदेश है इसी प्रकार आपको लेने के लिए हम यहां पर आए हैं। और विमान, देवताओं का विमान, देवता लोग धरती पर पैर नहीं रखते हैं, चरण नहीं रखते हैं, वो क्या कारण होगा तो मुझे पता नहीं है। वो
धरती से ऊपर ही रहते हैं, विमान भी उस धरती से ऊपर ही था। और ध्रुव को कहा कि आप चलिए बैठिए विमान में बैठिए। और विमान में बैठने के लिए जब वहां पर गए तो कैसे मैं चढ़ूं, उसी समय वहां पर एक विशाल काय जिसका रंग बिल्कुल काला है, विशाल काय है, और वहां पर आकर के खड़ा हो जाता है। और उसने कहा कि हे ध्रुव, तुम हमारे मस्तक पर पैर रखो और विमान में चढ़ जाओ। वो कोई और कोई नहीं था, वो साक्षात मृत्यु देवता वहां पर आते हैं। और उन्होंने कहा कि मृत्यु पर जिसने विजय प्राप्त की हो, जिसने परमात्मा को देखा हो, साक्षात्कार किया हो, उनका वर प्राप्त किया हो, उनको मृत्यु को उनका कुछ बिगाड़ सकती है क्या? उस समय वो मृत्यु को उन्होंने पार किया, मृत्यु के मस्तक पर चरण रख करके वो विमान में प्रविष्ट हो जाते हैं और विमान चल पड़ता है। विमान चल पड़ा, उनको स्मरण आया कि जिस मां के कृपा से, जिस मां के दया से, जिस मां के करुणा से, जिस मां के मार्गदर्शन से मुझे ये पद प्राप्त हो रहा है, मैं अकेला जा रहा हूं, मैं कितना स्वार्थी हूं। उसी समय कहा कि हे हमारे पार्षदों, विमान को रोको, विमान को रोको। क्यों? क्योंकि मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं। क्योंकि बात क्या है आप बताओ तो सही। बोले कि हम अपनी मां को छोड़ करके मैंने जाना चाहता हूं। पार्षदों ने कहा कि हे ध्रुव, जिसके कुल में तुम्हारे जैसा भगवत भक्त उत्पन्न हुआ हो, ऐसे कुल में वो कभी कुल, उसका कभी अधोगति नहीं हो सकती है। तुम देख रहे हो आगे एक विमान जा रहा है और उसमें देखो तो बाहर झांक करके उसमें तुम्हारी मां सुनीति वहां पर बैठी हुई है, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो। और वहां पर भगवत भजन करते हुए वहां पर पुनः भगवत भजन नहीं छोड़ना है, चाहे कोई भी आपको प्राप्ति हो जाए। इसलिए भगवान का भजन करते हुए ध्रुव कुमार वो ध्रुव पद की ओर चले जाते हैं। और वहां पर कहते हैं कि ऐसे जो भगवत भक्त जिस कुल में उत्पन्न होते हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चयेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन लीनम परब्रह्मन यस्य चेतः। जिसका परब्रह्म में अपना चित्त लग गया हो, ऐसे कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृत्य कृत्य हो जाती है। और जिस भूमि पर उनका जन्म होता है वो तीर्थ बन जाता है। प्रातः काल आप लोगों ने सुना, जहां पर अपनी मां को उपदेश दिया कपिल भगवान ने, वो उसको सिद्धपुर कहा जाता है, सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर संत निवास करते हैं। आप जितने भी आप तीर्थ देखोगे, उस गांव को कौन जानता होगा जिसको हम लोग वीरपुर बोलते हैं, है ना? आज से 200 साल पहले कौन जानता होगा वहां पर, कौन जाता होगा? जाता होगा कोई? कुछ लोग घर गृहस्थी वाले वहां पर होते होंगे, कभी आसपास वाले लोग जाते होंगे, परंतु वहां एक संत हुए ना, कौन कौन संत हुए है ना, आप सब जानते हैं, जलाराम बापा हुए। और आज कौन नहीं जानता उस क्षेत्र को, सुदामापुरी, सुदामा जी हुए, इसीलिए हम लोग उनको पहचानते हैं, पोरबंदर उनको इसीलिए जानते हैं कि वहां पर एक संत, वो जो कुल भी पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है, और वसुंधरा पुण्यवती चेतेना, जो वसुंधरा है वहां पर पुण्यवती बन जाती है, और वहां पर हम लोग जाकर के उस भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर जाते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, अपने आप को निर्मल करने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं। इस प्रकार ध्रुव जी अपने स्थान पर चले जाते हैं और ध्रुव जी का फिर वंश चलता है, ध्रुव जी का वंश चलता है। और ध्रुव जी के वंश में उनके एक वंश में एक अंग राजा होते हैं, और अंग राजा उनका कोई पुत्र नहीं है, और उन्होंने बड़ा भारी अनुष्ठान किया, और अनुष्ठान करने के बाद में
उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और उनको पता लगा कि यहाँ पर अनुष्ठान करते करते उनको पुत्र, वहाँ पर एक आकाशवाणी हुई, वहाँ पर कहा कि आपका इस जन्म में तो आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, परंतु पूर्व जन्म में कोई अपराध हुआ है, इस कारण से तुम आपको पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। परंतु कहते हैं कि वहाँ पर एक उनके ही कुल में एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था वेन। कभी कभी ये देखने में आता है वो जो ब्रह्मी पुत्री थी उसका जो नाम था उसका वेन, उसको राजा बना दिया। और राजा बनाने के बाद में वेन बड़ा दुष्ट राजा हुआ, वो बच्चों को ले जाता और बच्चों को ले जा करके वो तो सूखा कुआ होता, उसने कहता है कि देखो अंदर क्या झाको, और उनके अंदर उसको किस प्रकार का उसका जो राज्य चला और धरा बड़ी वहां पर उस समय हाहाकार करने लगी। और उसी समय कहते हैं कि सब ऋषि भी संतप्त हुए और ऋषि ने विचार किया, उसको समझाने का प्रयत्न किया कि हे वेन तुम्हें दुष्ट कर्म मत किया करो। उन्होंने कहा कि तुम लोग समझदार नहीं हो, यहाँ पर कहा है कि बालिश शब्द का प्रयोग किया है, तुम लोग नहीं समझते हो, जो राजा होता है उसके शरीर में विष्णुर्विरंचो ग्रीषम इंद्रो वायु यमो रवि पर्जन्यो धन सोम चित्रग्नि परामपति। बोलते हैं कि राजा के शरीर में विष्णु है, शिव है, ब्रह्मा है, सब इंद्र है, वरुण है, सब उनके देवता होते, तुम लोग ये सब यज्ञ आदि सब छोड़ दो और मेरी पूजा करो। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। ध्रुव के कुल में ऐसा भी कभी एक हुआ और फिर ऋषियों को लगा कि ऐसा राजा होगा तो कल्याण किसी का होने वाला नहीं है। उन्होंने एक हुंकार की, जब राज्य में अनीति चलती हो, जब प्रजा त्राही त्राही करती हो, तो वहां के ऋषि वहां के संत वो शस्त्र तो नहीं लेते हैं परंतु मन में संकल्प करते हैं कि हमारा देश इतना वैभवशाली है, ये भगवान का देश है, ये धरती ये परम पवित्र धरती है, इसकी रक्षा होने के लिए। और उस समय संत लोग संकल्प करते हैं और ऋषियों ने संकल्प किया और हुंकार मारी और वहां पर राजा जो वेन था उसका शरीर पात हो गया। जब डाकुओं को पता लगा कि शरीर चला गया है राजा का, तो वो डाकुओं का वहां पर उत्पात बढ़ गया, फिर चिंता हुई ऋषियों को, फिर से चिंता हुई अब क्या करना चाहिए। तो ऋषियों ने विचार किया कि अब ऐसा करो कि इस जो राजा है इसी का मंथन करो। उस वेन राजा का मंथन किया, पहले उसके जांग का मंथन किया और जांग से वहां से एक छोटा सा बालक पैदा हुआ। और बालक जब पैदा हुआ तो नाटा सा बालक, उसकी जो आकृति भी कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि जो राजा होता है उसकी आकृति भी कुछ भगवान की तरह होती है, बड़ा सुंदर स्वरूप होता है, उसकी आकृति भी छोटी थी। और उसको कहा कि तो निश्चित बैठ जाओ यहां पर। फिर विचार किया कि आप क्या करना चाहिए, तो उस समय कहते हैं कि ऋषियों ने उस राजा वेन की बाहु का मंथन किया और बाहु का मंथन जब किया तो दाहिनी भुजा से वहां पर एक सुंदर वहां पर एक स्वरूप वाला एक वहां पर स्वरूप प्रकट हो जाता है और उस समय ऋषियों को आनंद होता है और वही राजा प्रथु होते हैं। ऐसे राजा प्रथु का वहां पर आविर्भाव हो जाता है और हमारे इस परंपरा में राजा प्रथु का बहुत बड़ा महत्व है, जिसने पृथ्वी को समतल किया। ऐसे राजा प्रथु का अवतार हो जाता है, प्रकट हो जाते हैं और सभी जो वहां के ऋषि है मुनि है बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब बिल्कुल ठीक ठाक चलेगा। और इस प्रकार का आगे जब प्रारंभ हुआ तो आगे हम लोग कल पुनः हम लोग इस परंपरा को आगे श्रवण करेंगे। अब उत्तानपाद के हम लोगों ने चर्चा श्रवण की, हम लोग अपने मूल को पकड़ के चल रहे हैं। मूल क्या, भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि से लेकर के अब उससे उसने जिसको प्रकट किया, ब्रह्मा जी, उन्होंने मनुजी महाराज को, मनुजी महाराज ने तो उसके बाद में उनके पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, और कल थोड़ी हम लोगों की कथा, हम लोग प्रियव्रत की कथा श्रवण करेंगे। तो जब तक प्रियव्रत की कथा श्रवण करेंगे तब तक हम लोग थोड़ा सा भजन संकीर्तन करते हुए आज की सभा को यहाँ पर विराम देंगे तो अच्छा रहेगा। श्रीमन नारायण
नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आदि नारायण नारायण नारायण
आदि नारायण नारायण नारायण
हरि बोल
अनादि
नारायण नारायण
नारायण
अनादि नारायण 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 नारायण
नारायण
श्रीमन नारायण नारायण
नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
हरि बोल
भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती
श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती
श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती
श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती
ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योत जगाने वाला नवज्योत जगाने वाला हरि नाम यही हरि ज्ञान यही हरि नाम यही हरि नाम यही
जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती
श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला
हरि दर्श कराने वाला
ये सुख करनी
है दुख हरनी
ये सुख करनी है दुख हरनी
श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है
श्री भागवत भगवान ये मधुर बोल पर पंत कोल सन्मार्ग बिठाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला
बिगड़ी को बनाने वाला
श्री राम यही घन श्याम यही
श्री राम यही घन श्याम
प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती
श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती
कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा वर्ष
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये ब्रह्मदेव गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते।
बोलिए भागवत भगवान की।